मैं समझता हूँ कोई भी एक नॉर्मल जो पेरेंट है जो अपने बच्चों की दुनिया और आखिरत दोनों के बारे में फिक्रमंद है, और इवन चले आखिरत के बारे में ना भी हो, दुनिया के बारे में भी फिक्रमंद है, वो भी कहेगा कि आई डोंट वांट माय चाइल्ड टेकिंग पीपल हु आर यूजिंग फाउल लैंग्वेज एंड प्रमोटिंग ड्रग्स एज देयर रोल मॉडल।
तो गे स्कोर एलजीबीक्यू को फिर भी बुरा नहीं कहूंगी, मेरे मुंह से निकलवा के दिखा दो। तुम लोगों ने मुझे समझा हुआ क्या कि मैं दूध पीती बच्ची हूँ, मैं कोई मैं उल्लू की पट्टी हूँ।
डोंट इवन केयर। अच्छा काला बाहर आ गया।
एक्सक्यूज मी कोरोना,
ये क्या है? ये कोई शलजम है, मूली है, खीरा है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, कोई सब्जी है?
So if this person, जिसका social media profile, ये हम कोई उसकी कोई ये नहीं कह रहे कि उसकी कोई private accounts में कहीं छुप के हमने कोई खुफिया कैमरों के जरिए footage ली, ये वो वाली बात नहीं, ये वो बातें जो public limelight में, इसीलिए हम discuss कर रहे हैं, because they're public। अगर किसी का कोई private मामला हो, मैं कहता हूँ वो private रहना चाहिए, हम उसके बारे में चुप रहे, उसकी privately इस्ला कर दें। लेकिन जब एक बंदा publicly एक बात कह रहा है तो उसको publicly denounce करना ही बनता है। एक personality जिनका नाम डॉक्टर मेहरब मोईज या फॉर्मली मोहम्मद मोईज था, उनकी कंट्रोवर्सी बनी सोशल मीडिया के ऊपर विद स्कूल नेम्ड ISL इन लाहौर, और उसके बाद उनको एक टेडएक्स टॉक्स पे नहीं जाने दिया, वो टॉक कैंसिल हो गई, उसके बाद कुछ कंट्रोवर्सी बनी, फिर कुछ हमारी जो एक डिज़ाइनर है हमारी अभी, वो उसमें स्टेप इन हो गई, और फिर सोशल मीडिया पे डिफरेंट न्यूज़पेपर्स पे डिफरेंट सेलिब्रिटीज वर जंपिंग इनटू दिस, सो इट लेफ्ट अ लॉट ऑफ पीपल वेरी कन्फ्यूज्ड कि ये क्या हो रहा है, इज़ इट शुड बी सपोर्ट this personality, should we not support him, her, whatever, जो भी हमें क्या करना चाहिए, हमारा stance क्या होना चाहिए, क्या ISL ने ठीक किया refuse करके नहीं किया, तो काफ़ी confusion थी। तो इसकी पहले जो दो तीन मिनट में मैं उसका सरसरी सा खुलासा बयान कर दूँ, वो ये है कि देखें कोई भी स्कूल जो है ना वो राइट टू एडमिटेंस रखता है अपने पास, और ये बहुत दफ़ा होता है कि बहुत सारे इवन इस्लामिक स्पीकर्स को भी डिनाई कर दिया जाता है कि जी हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे जो हैं वो ये कॉन्टेंट इस लेवल पर पढ़ें या सुने या सीखें, इस्लाम की जो बात है वो मस्जिद तक ही आप रहने दें, आप बराए मेहरबानी ना आए। तो अगर किसी लिबरल टाइप के बंदे को डिनाई कर दिए तो इसमें पहली बात है इतनी बड़ी क्या बात है, स्कूलों की अपनी मर्जी होती है, जैसे कहते हैं ना मेरा जैसा मेरी मर्जी, तो स्कूलों की भी अपनी मर्जी होती है, वो जो चाहे अपने पॉलिसी बनाए, एंड वी हैव टू अडेयर टू दैट एंड वी रिस्पेक्ट इट फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली बात यह कि डिनाई क्यों किया गया, वॉट वॉज द रीज़न फॉर द डिनाइल, और वो जो स्कूल है उसने अपनी इंस्टाग्राम फीड पर भी रीज़न्स लिखे हैं, और वो रीज़न्स कोई भी बंदा जो ये डॉक्टर मेहरब के अकाउंट्स पे जाके देखेगा तो आइडिया हो जाएगा कि देर इज़ अ लॉट ऑफ यूज़ ऑफ फाउल लैंग्वेज, इंतहाई गंदी और गलीज ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है। कोई भी मेरा ख्याल है डिसेंट पेरेंट जो है वो नहीं चाहता कि उसके बच्चे के रोल मॉडल वो लोग हों जो इंतहाई फोहश गुफ्तगू करते हैं।
और जुमना दाहिर कह रही है तुमने शादी कौन करनी, हाँ बेसिकली यही वाली बात तो मैं कह रही हूँ मेरी जान, वो तुम्हारा मसला है। तो ये कभी किसी की शलवार से ये कभी किसी की पैंट से बाहर आके सोच ही नहीं सकते।
नंबर टू, कोई भी पेरेंट नहीं चाहता कि उसके बच्चे किसी ऐसे शख्स को रोल मॉडल लें जो कि ना सिर्फ ड्रग्स एंड अल्कोहल की बात करता है बल्कि अपने पॉडकास्ट के अंदर अपने शोज़ के अंदर ओपनली हैश जो है वो स्मोक भी कर रहा होता है, एंड इन सर्टन पॉडकास्ट इवन मेंशनड कि ये जो है मैं तो इसको एडवोकेट करता हूँ, मैं तो आई एम एन एडवोकेट फॉर दीज थिंग्स, एंड मैंने DC में इसको एडवोकेट किया एंड ऑल दैट स्टफ। सो व्हाई वुड अ पेरेंट, एनी नॉर्मल पेरेंट वॉन्ट देयर चिल्ड्रन टू बी एक्सपोज टू दिस टाइप ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल यू नो ग्लोरिफिकेशन
ऑफ चर्स?
आई लव चर्स,
या बट वीड और हैश
I consume everything that is marijuana in it.
Everything
I'm a very big proponent of legalizing marijuana as well.
Yeah,
I was part of the DC policy reforms, jahan pe DC ke andar later on jo hum log pushes kar rahe the Washington DC ke andar to legalize cannabis. Of course yeah. It was very difficult, but yeah.
No, sure.
So basically the final is when your brain really trips. And I would like to say that is also the most truest state because jin logon ne psychedelics kiye hue hain, maine kiye hue hain, main to duniya ka har nasha kiya hua khair.
And thirdly, aapka jo content hai jo aap produce kar rahe hain Instagram pe, wo primarily sexual nature ka hai. जिसमें आप हर किस्म की सेक्सुअल प्रैक्टिसेस को भी डिस्कस कर रहे हैं, आप सेक्सुअल ओरिएंटेशंस को भी डिस्कस कर रहे हैं, आप क्लियरली बात कर रहे हैं कि होमोसेक्सुअलिटी जो है वो इस्लाम में परमिसिबल है, मैं नहीं इसको कभी भी बुरा कहूंगा, ऑल ऑफ दैट स्टफ।
तो गेस को और एलजीबीक्यू को फिर भी बुरा नहीं कहूंगी, मेरे मुंह से निकलवा के दिखा दो। तुम लोगों ने मुझे समझा हुआ क्या कि मैं दूध पीती बच्ची हूँ, मैं उल्लू की पट्टी हूँ। मीडिया इंडस्ट्री के अंदर यासर हुसैन इज अ बिग, ये चीजें हैं ना, यानी हम लोग को टाइटनेस पसंद आती है, हम लोग को वर्जिनिटी पसंद आती है, हम लोग को खोलना पसंद आता है।
सो एक बंदा जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जाके टेडएक्स के स्पीकर के तौर पे जा रहा है और उसको डिनाई किया जा रहा है, नाउ द केस बीइंग मेड इज फॉर ट्रांसजेंडरिज्म, कि जी मसला असल में इनको मेरे ट्रांसजेंडर होने से था। तो चले लेट्स नाउ कम टू द मेन टॉपिक विच इज ट्रांसजेंडरिज्म। सो पहली बात तो मैंने कहा था कि मैं पहले दो मिनट में केस रिफ्यूट कर दूंगा कि एनी पेरेंट वुड नॉट वॉन्ट दिस कॉन्टेंट फॉर देयर किड्स। लीविंग दैट असाइड, कुछ हमारे ऐसे लोग भी हैं सेलिब्रिटीज खास तौर पे, कुछ एक्ट्रेसेस हैं जो सपोर्ट में आ रही है कि जी चूंकि वो ट्रांसजेंडर है तो आपको क्या मसला है, आप उसकी राइट्स को क्यों नहीं आने देते। तो आज मेरा मकसद ये था कि मैं आपको इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूं कि व्हाट इज ट्रांसजेंडरिज्म, व्हाट इज ट्रांसजेंडर, व्हाट इज LGBTQ, व्हाट इज ऑल ऑफ दिस स्टफ। तो इसके बारे में हम जरा एक डिटेल में बात करें इंशाल्लाह, ताकि हमें कम से कम कोई कंफ्यूजन ना हो इसके बारे में। इस मामले को समझने के लिए आपको मूव बैक करना पड़ेगा 1960s और 70s में, जब अमेरिका में सेक्सुअल रेवोल्यूशन का ये टाइम पीरियड कहा जाता है इसको। और इसकी अगर मैं आपको स्टैंडर्ड डेफिनेशन पढ़ दूं तो कहते हैं द सेक्सुअल रेवोल्यूशन आल्सो नोन एज अ टाइम ऑफ सेक्सुअल लिबरेशन वाज अ सोशल मूवमेंट दैट चैलेंज्ड ट्रेडिशनल रोल्स और ट्रेडिशनल कोड्स ऑफ बिहेवियर रिलेटेड टू सेक्सुअलिटी एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स थ्रू आउट द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द डेवलप्ड वर्ल्ड फ्रॉम द 1960s टू द 1970s। सो बेसिकली जो की वर्ड यहाँ पे है वो ये कि इसने चैलेंज किया था ट्रेडिशनल जो कोड्स हैं बिटवीन मैन एंड वुमेन, उसको चेंज किया, उसको रीडिफाइन किया रिलेटेड टू सेक्सुअल रीइंटरप्रिटेशन ऑफ रिलेशनशिप्स। अच्छा, ये तो अब मैंने आपको बता दिया कि ये उसका टाइम पीरियड है और ये उसका मकसद था। अब यहाँ पे नाइन वर्ड्स मैं आपके सामने पेश करूँगा और ये सारे वर्ड्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। सो तो पहले तीन वर्ड जो हैं वो हैं सेक्सुअल रिलेशंस, रिप्रोडक्शन एंड मैरिज। इन तीन वर्ड्स को आप एक क्लस्टर में बंद कर दें, ठीक है? सेक्सुअल रिलेशंस, रिप्रोडक्शन एंड मैरिज। व्हाट इज सेक्सुअल रिलेशन? सेक्सुअल रिलेशन इज अ मैन एंड वुमन हैविंग सेक्सुअल इंटीमेसी, दैट्स नंबर वन विच इज क्लियरली एविडेंट। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन इज द एक्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ चाइल्ड, एक बच्चा पैदा होने का अमल जो है उसको रिप्रोडक्शन कहते हैं। और मैरिज क्या है? मैरिज हमें मालूम है। तो ये जो तीनों चीजें ना, ये ट्रेडिशनल कोड्स कहते हैं ना कि वी गोइंग टू चैलेंज द ट्रेडिशनल कोड्स, तो ये जो ट्रेडिशनली ये तीनों चीजें एक ही डब्बे में होती थी। सेक्सुअल रिलेशन का मतलब है कि ये शादी के अंदर ही होगा, मैरिज में होगा, और इसका मकसद जो है वो रिप्रोडक्शन होगा, यानी आपने अपनी फैमिली को बड़ा करना है तो इसलिए आपके सेक्सुअल रिलेशन भी हैं और आपके बच्चे हो रहे हैं और आपने शादी की हुई है। इसके अलावा ये कॉन्सेप्ट, इसका कॉन्सेप्ट यानी टैबू था और ये गुनाह समझा जाता था इवन इन द वेस्टर्न वर्ल्ड के आउटसाइड ऑफ मैरिज, इवन यानी जहां स्ट्रॉन्ग कैथोलिक बैकग्राउंड्स हैं या स्ट्रॉन्ग ज्यूइश बैकग्राउंड्स हैं, दे स्टिल इवन टू दिस डेट कंसिडर टू बी सिनफुल के शादी से पहले उनके कोई ना कोई सेक्सुअल रिलेशंस हों। तो ये तो पहली बात है कि इन तीन टर्म्स को इस सेक्सुअल रेवोल्यूशन ने अलहदा कर दिया कि यू कैन हैव सेक्सुअल रिलेशंस विदाउट रिप्रोडक्शन एंड विदाउट मैरिज। Similarly, you might be even able to reproduce without sexual relations and without marriage. How is it possible कि आप reproduction कर रहे हैं without sexual relations? Well, test tube babies और ये जो सारा जो है ना medical science के अंदर sperm donations और उनके जरिए आप जो है ना चीज़ create करवा लें, एक surrogate mother को hire कर लें और उसके पेट में जो है ना वो impregnation करवा दें उसकी और हो जाएगा, आपको sexual relation की ज़रूरत नहीं है। So all these three and marriage now it becomes a lifestyle choice. Marriage kya hai? I mean, if you want to really tie yourself down to one person, then fine, go ahead and get married. But otherwise, marriage is not recommended in this framework. वहाँ पे ये कि आपके open sexual relations हैं, open partners हैं. Number two, आपके पास जो है वो reproduction, वो भी अब आपकी अपनी मर्जी है, आपने करना है नहीं करना। इसीलिए reproduction को रोकने के लिए abortion भी introduce करा दिया गया कि अगर खुदा ना खास्ता आप reproduction के अमल की तरफ जा रहे हैं and you don't want it, then you can always abort it. And the final thing was marriage itself. तो ये तीन words जो हैं, sexual relations, reproduction and marriage. Traditionally एक डब्बा था, अब एक नहीं है, अब ये separate separate खाने हो चुके हैं। Number two जो तीन words हैं वो हैं sex, gender and sexual orientation. So sex क्या है? ट्रेडिशनली ये तीन भी एक ही डब्बा था। सेक्स यानी आपका बायोलॉजिकल सेक्स, सो फॉर एग्जाम्पल यू आर बॉर्न अ मेल और यू आर बॉर्न अ फीमेल। जेंडर क्या है? जेंडर इज वॉट यू प्रसीव योर सेल्फ टू बी। नाउ दिस इज वॉट दे हैव नाउ कम अप विद। एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है कि आप किस तरफ लीन करते हो, हेट्रोसेक्सुअल, होमोसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, पैनसेक्सुअल, एसेक्सुअल, अभी इस पर बहुत सारी सेक्सुअल ओरिएंटेशंस भी आ गई. सो नाउ द थिंग इज के पहले ये था कि फॉर एग्जांपल एक मेल है, यानी सेक्स एंड जेंडर वाज द सेम थिंग. जेंडर, ऑनेस्टली स्पीकिंग, जेंडर जो था ना ये टेक्निकली कभी इस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल ही नहीं हुआ. जेंडर ये लैंग्वेज में इस्तेमाल होता था. फॉर एग्जाम्पल चीज़ों के जेंडर होते थे. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने उर्दू की ज़ुबान में मुजक्कर और मोनस पढ़े हैं ना आपने बचपन में, तो मैं कहता हूँ इमरान का टेबल या इमरान की टेबल, का टेबल, तो टेबल क्या है, मुजक्कर है, यानी इट्स अ मेल, यानी उसके अंदर ये मेल में आता है. फातिमा की किताब या का किताब, की किताब, तो किताब क्या है, मोनस है. तो ये जेंडर जो था ना ये इन चीजों में यूज होता था. तो क्योंकि किसी बंदे को देखकर इट वॉज क्लियर लाइक 99.99999% चांसेस हैं कि यू गोइंग टू गेट इट राइट. आप किसी की शक्ल देखते हो आप कहते हो मेल फीमेल, मेल फीमेल, यानी दिस वॉज सो इंस्टिंक्टिव. और हमारा बिहेवियर लोगों के साथ, हमारे लोगों के साथ डीलिंग जो है वो इसी बेस पे चेंज होती थी. फॉर एग्जाम्पल अगर आप जा रहे हैं और आपकी टक्कर हो गई है और गाड़ी से खातून उतरती हैं, तो आप उनके साथ फटा नहीं करते, आप कहते हैं चलें बाजी कोई बात नहीं जाए. अगर कोई बंदा निकलता तो कहता हूँ किधर भाई तुम्हारी आंखें बटन है क्या हो गया, आप एकदम से अग्रेसिव हो जाते हो. ठीक है, सो एक ऑटोमेटिक, अब वो अगर खातून बाहर निकली और आप उन्हें कहें सॉरी बाजी मैं कोई बात नहीं, अब जाए कि आप मेरा जेंडर क्यों अज्यूम कर रहे हैं कि मैं बाजी हूँ, व्हाई यू अज्यूमिंग माय जेंडर, हाउ डू यू नो, इजंट इट ऑब्वियस, मतलब मेरी आंखें नहीं, आई कैन सी यू आर अ वुमन. ठीक है, आई डोंट नीड अ मेडिकल एग्जामिनेशन, आपका मेडिकल कराने की जरूरत नहीं है, आई नो इट बिकॉज दिस वॉज सो इंस्टिंक्टिव. और इसीलिए ये चीज़ें तो इतनी इनग्रेंड हैं इंसानों के अंदर कि ये तो जानवरों में भी बात कॉमन है. जानवरों को भी पता है कि मेल एंड फीमेल है. जानवर तो नहीं आइडेंटिफाई कर रहे कि नो आई एम अ लायन बट आई एम आइडेंटिफाइंग एज अ लायनेस. ठीक है, सो दिस वुड नेवर हैपन. सो द थिंग इज कि इन्होंने क्या किया, इन चीज़ों को सेपरेट किया, सेक्स अलहदा कर दिया, जेंडर कह दिया. जेंडर इज अ सोशल कॉन्स्ट्रक्ट. जेंडर जो है वो आपका एक परसीव्ड है कि अगर आप अपने यानी आप मर्द हैं लेकिन आप अपने आप को फेमिनिन फील करते हैं अंदर से, तो आप अपने आप को फीमेल कह दें, आप कह दें कि आई एम अ वुमन एंड पीपल शुड रिस्पेक्ट यू फॉर दैट. एंड द थर्ड थिंग वॉज योर सेक्शुअल ओरिएंटेशन, विच मीन्स के नाउ यू कैन से आई एम अ होमोसेक्सुअल, हेट्रोसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, व्हाटएवर, जिस किस्म की भी ओरिएंटेशन आप कहना चाहें तो आप कह सकते हैं. सो क्या हुआ, ये जो तीन चीज़ें एक हुआ करती थी और सिंपल था, स्ट्रेट फॉरवर्ड था, इसके अंदर सेक्शुअल रेवोल्यूशन ने आके सेपरेशन क्रिएट की, इनको सेपरेट कर दिया. सेक्स अलहदा चीज़ है, जेंडर अलहदा चीज़ है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन अलहदा चीज़ है. अब ना हो ये रहा इंस्टाग्राम के ऊपर लोग आके अपने प्रेफर्ड प्रोनाउंस मेंशन कर रहे हैं, और उसमें कुछ हमारे मिस्कीन मुसलमान भी हैं जिनको ये नहीं पता, और वो वाकई में यानी लाइलमी की वजह से कर रहे हैं क्योंकि उनको नहीं पता कि जो प्रेफर्ड प्रोनाउन आप बता रहे हो ये वो लोग बताते हैं जो अपने आप को LGBTQ आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि आई एम फ्रॉम दैट कैटेगरी. एक आम बंदे को हिम हिज लिखने की जरूरत नहीं है या शी हर करने की जरूरत नहीं है उसको, वो अंडरस्टूड है. नॉर्मली मैंने कहा था 99.999% आपको अंडरस्टूड है कि मैं इसको ही कहूं या शी कहूं, इट्स क्लियर. बट देन इफ यू आर स्पेसिफाइंग इट, इसका मतलब यह है कि आप नॉर्मल से अपने आप को अलहदा करना चाह रहे हो कि हाँ तुम्हें नजर तो मैं मर्द आ रहा हूंगा बट प्लीज कॉल मी शी हर बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू बी आइडेंटिफाइड एज हिम एंड ही एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ. सो इसलिए वो प्रेफर्ड प्रोनाउन लिखते हैं. तो ये सेकेंड कैटेगरी है कि जो पहली के बाद दूसरी कैटेगरी जो है जिसमें इस्लाम ने जोड़ा हुआ था या बाकी ट्रेडिशंस ने भी, बाकी रिलीजन्स ने भी जोड़ा हुआ था, इन्होंने आके तोड़ दिया. और तीसरी चीज उसके बाद, तीसरी कैटेगरी वो है जो चीजें इस्लाम ने और बाकी मजाहिब ने अलहदा रखी हुई थी, इन्होंने आके जोड़ दी है, यानी उल्टा काम किया. वो क्या है, डिजायर, एक्शन एंड आइडेंटिटी. सो एक है आपका एक डिजायर है, यू हैव अ डिजायर, यू मे और मे नॉट एक्ट ऑन दैट डिजायर. यानी इस्लाम के अंदर है ना कि अगर आप गुनाह करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप गुनाहगार नहीं हैं, अनलेस कि आप एक्शन लेते हैं और आप गुनाह कर देते हैं फिर आपको गुनाह मिलता है. मिसाल के तौर पे मैं अगर ये सोच रहा हूँ कि मुझे हमारे जो मीडिया पर्सन है उनका मोबाइल फ़ोन चोरी कर लेना चाहिए, तो मुझे अभी तक गुनाह नहीं मिला क्योंकि मैंने चोरी नहीं की. मैं अभी यहाँ बैठा सोच ही रहा था कि मुझे उसका फ़ोन चोरी कर लेना चाहिए. अगर मैं यहाँ से उठता हूँ और जाके चोरी कर लेता हूँ, देन अब मुझे गुनाह मिल रहा है कि मैंने एक्शन किया और अब मैंने एक चोरी की हरकत की है. ठीक है, और आइडेंटिटी क्या है कि मैं अपने आप को आइडेंटिफाई करना शुरू कर दूं उस गुनाह के साथ जो मैं करता हूं. तो फॉर एग्जांपल अब ये तीनों चीजें सेपरेट थी कि हो सकता है कि एक बंदा सोच रहा है लेकिन वो चोर नहीं है, चोरी कर भी लेता है लेकिन वो फिर भी आदि मुजरिम नहीं है, वो गलती से चोरी होगी, वो तोबा करता है, वो अपने आप को अलहदा कर लेता है, और फिर वो चोर है जो कि हैबिचुअल चोर है और चोरी कर रहा है, वो एक्चुअल उसकी आइडेंटिटी है कि वो चोर है, लेकिन इस्लाम उसको भी आइडेंटिफाई नहीं करता कि इसको चोर के तौर पर लेबल किया जाए, क्योंकि तोबा का रास्ता उसके पास भी खुला है, वो भी आज तोबा कर ले तो वो ठीक हो जाएगा, उसको अपनी प्रोफाइल में लिखने की जरूरत नहीं है आई एम अ चोर। अब ये क्या कह रहे हैं, अब इस मूवमेंट में क्या हुआ है कि बिकॉज यू हैव अ डिजायर फॉर समथिंग इवन दो यू मे नॉट हैव एक्टेड ऑन इट, यू स्टार्ट आइडेंटिफाइंग एज दैट पर्सन। सो फॉर एग्जाम्पल इफ अ पर्सन हैज अ होमोसेक्सुअल थॉट, एक पासिंग थॉट, यानी आपको पता है हमें दिन में ना कोई 10,000 थॉट्स आती हैं, अब उन 10,000 में से कभी कभार थॉट ऑफ मर्डर भी आ जाती है, मैं नहीं पूछूंगा आप में से इस कैंप में कितने लोगों को मर्डरस थॉट्स आई हैं, ठीक है, कि मुझे किसी फलाम बंदे को मार देना चाहिए, होता है कभी कभार किसी टीचर कोई बहुत आपको डांट रहा होता है, गुस्सा करता है, मैं अश्विन किलम, ठीक है, या कोई आपको ट्रैफिक में कट ऑफ करता है, कहता यार खुदा की कसम मैं इसको बर्दल चाहता है मुंह पे इसके, मैं तो कभी कभार थॉट आती है, बट इट्स नॉट सीरियस, इट्स अ पासिंग थॉट, पासिंग थॉट्स बहुत सारी आती हैं। अब ये मूवमेंट ये कहती है कि अगर आपको एक पासिंग थॉट भी आया है होमोसेक्सुअलिटी का, देन यू शुड आइडेंटिफाई योर सेल्फ एज होमोसेक्सुअल बिकॉज योर डिजायर्स आइडेंटिफाई यू। सो इट कुड बी कि एक लड़का अपने बाप के पास आया, कहता है कि अबू अबू आई एम अ होमोसेक्सुअल, तो अबू कहते बेटा हैव यू डन इट, कहते नो आई जस्ट थॉट अबाउट इट, तो अब क्या चाहिए जूते मारने चाहिए इसको कि भाई पासिंग थॉट पे तू अपने आप को लेबल कर रहा है, तू अपना इंस्टाग्राम पे अकाउंट बना ले, लिख दे आई एम होमोसेक्सुअल जस्ट बिकॉज यू हैड अ पासिंग थॉट। सो द थिंग इज कि हमारे कभी भी हम अपने आप को गुनाहों से आइडेंटिफाई नहीं करते, वी डोंट आइडेंटिफाई आर सेल्व विद एनी रॉन्ग एक्शन, एंड द थिंग इज आइडेंटिटी जो है ना ह्यूमन आइडेंटिटी वो किसी भी फॉर्मेट में हो सकती है, मतलब हाउ डू यू आइडेंटिफाई योरसेल्फ, इट कुड बी अ मिलियन वेज, फॉर एग्जाम्पल यू कुड आइडेंटिफाई एज पीपल वेयरिंग व्हाइट सॉक्स वर्सेस पीपल वेयरिंग ब्लैक सॉक्स, यू कुड आइडेंटिफाई एज पीपल हु सपोर्ट वन पर्टिकुलर पोलिटिकल पार्टी और अनदर पोलिटिकल पार्टी, यू कुड आइडेंटिफाई एज पीपल विद ब्लैक हेयर वर्सेज पीपल विद ब्राउन हेयर वर्सेज पीपल विद ब्लॉन्ड हेयर, यू कुड आइडेंटिफाई एज इन्फिनिट नंबर ऑफ थिंग्स रियली, ठीक है, आप अपने आपको कितने, यानी कैटेगराइजेशन जो है ना, जो हम कैटेगराइजेशन करते हैं वो इट्स ऑल इन द माइंड, यानी आप कहते हो, यानी इवन जो हम लोगों ने क्लासिफिकेशन की हुई है मैमल्स की और रेप्टाइल्स की, वो भी कुछ क्वालिटीज हमें लगता है इनमें सिमिलर है, तो क्वालिटीज तो हमारे में और किसी और बंदे में भी सिमिलर हो सकती है। फॉर एग्जांपल अल्लाह ताला जो कुरान में कैटेगराइजेशन करते हैं वो बिलीवर्स और डिसबिलीवर्स की है, एंड अल्लाह ताला की सारी क्रिएशन जो है वो बिलीवर कैटेगरी में आती है, जो अल्लाह ताला की मखलूक है, सब बहालिल्लाह मा फिस समावाति व मा फिल अर्ध, जमीन व आसमान की हर शय अल्लाह की तस्बीह बयान कर रही है, और इंसानों में भी ऐसे हैं जो अल्लाह की तस्बीहें बयान कर रहे हैं, और जिनों में भी ऐसे हैं जो अल्लाह की तस्बीहें बयान कर रहे हैं, और काफिरों में इंस और जिन दोनों में पाए जाते हैं। तो अल्लाह ताला तो क्लासिफिकेशन यूं कर रहा है, तो दिस इज अ गुड क्लासिफिकेशन, दोज हु रिमेंबर अल्लाह एंड दोज हु डोंट रिमेंबर अल्लाह सुब्हानहू व तआला, एंड द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड द हार्ट दैट रिमेंबर्स अल्लाह एंड द हार्ट दैट डजंट रिमेंबर अल्लाह इज लाइक द लिविंग एंड द डेड, वो लोग जिंदा और ये मरे हुए हैं। सो टेक्निकली क्लासिफाई करने के तरीके लिटरली इंफिनिट है। सो व्हाई इज इट कि देयर इज सच अ स्ट्रेस नाउ कि यू आइडेंटिफाई with whatever you prefer in the bedroom, let's classify mankind based upon what your preference is in the bedroom. Kal ko aap koi Allah maaf kare koi sexual acts ke taur pe define karna shuru kar denge ki those people who prefer this act versus those who prefer that act, I am a this, I am a that, is tarah identify kare log apne aap. Why is that even important, I am asking? Yani kya ye important nahi hai ki insaan society ko de kya raha hai, insaan ka skill set kya hai? Ha, I am a doctor, I'm an engineer, I'm a writer, I'm an author, I'm a philanthropist, I'm a politician, I'm a so and so. Yani kya ye behtar nahi tha identification karne ka bajaye ke what I prefer in the bedroom, now identify as that. To pata hi chala ki jo sexual revolution ki movement thi usne pehli dafa logon ko is baat par amada kiya ke aap apni sexual orientation ko apni identity bana le. And the problem with this identity is ke people change all the time. People who were once who thought they were homosexual are no longer homosexual. So then they say, okay, then why don't you identify as bisexual? Or why don't you identify as that my sexuality is fluid? Yani I might prefer this or that or the other or whatever. Okay? So this is the thing that Allah Ta'ala's creation changes until you reach here. So I have told you about three categorizations. Two things, two categories were those in Islam and the rest of the religions and traditional societies mein, जुड़ी हुई थी, सेक्सुअल रेवोल्यूशन ने उनको आके तोड़ा, और आखिर में एक वो चीज थी जो अलहदा थी जिसको आके जोड़ दिया कि योर डिजायर्स डिफाइन हुई यू आर, योर डिजायर्स डिफाइन हुई यू आर। अब आते हैं इस्लामिक पोजीशन के ऊपर. एक क्लेम ये जो डॉक्टर मैरब की तरफ से था कि जी एक वीडियो में था इनका कि इस्लाम डजंट प्रोहिबिट होमोसेक्सुअलिटी, आई एम पैराफ्रेजिंग, कि इस्लाम डजंट प्रोहिबिट होमोसेक्सुअलिटी बिकॉज इन ऑर्डर फॉर इस्लाम टू प्रोहिबिट होमोसेक्सुअलिटी इस्लाम नीड्स टू डिफाइन अ जेंडर बाइनरी. तो इतना स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह सुबहान तआला कुरान मजीद में बार बार डिफाइन कर चुके हैं कि हमने मेल और फीमेल पैदा किए हैं, मेल और फीमेल पैदा किए हैं. या अय्युह अन्नास तक्कू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्सा मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ. अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने तुम्हें नफ्स वाहिदा से पैदा किया, आदम अलैहिस्सलाम से, और उससे उसकी ज़ौजा को पैदा किया, मेल और फीमेल, और इनमें से रिजाल मर्दों को और औरतों को पैदा करके दुनिया में फैला दिया. और अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं वलैस ज़खरकल उनसा, द मेल इज नॉट लाइक द फीमेल. अल्लाह सुब्हान तआला इज डिफाइनिंग दैट कि मेल डिफरेंट है, फीमेल डिफरेंट है. और इसके अलावा बेशुमार आयात हैं जहां पे अल्लाह सुब्हान तआला यही बात कह रहा है कि हमने मेल और फीमेल पैदा किया. तो पहली बात तो ये कि इस्लाम इज वेरी क्लियर ऑन दैट कि अल्लाह ताला ने मेल और फीमेल पैदा किए. अच्छा, अब इसके बाद असल चीज आती है जो देर आर एक्सेप्शंस टू द रूल, जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे कि वो एक्सेप्शंस क्या होती हैं. सुना सिर्फ ये कि कुरान मजीद ने मेल और फीमेल को डिफाइन किया, बल्कि जेंडर रोल्स भी डिफाइन कर दिए कुरान में भी और हदीस में भी, कि व्हाट आर मेन सपोज्ड टू डू एंड व्हाट आर वुमेन सपोज्ड टू डू, यानी फ्रॉम एन इस्लामिक पर्सपेक्टिव. यानी अगर हम लोग अभी ये बात करें कि हम लोग पाकिस्तान में रहते हैं, जो कि एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, जहाँ पे हम ये कहते हैं सॉवरेंटी बिलोंग्स टू अल्लाह, और हम कहते हैं कि जो बात अल्लाह की है वो आखिरी है. तो अल्लाह ताला कुरान मजीद में ना सिर्फ मेल और फीमेल डिफाइन कर रहे हैं, बल्कि उनके रोल्स भी डिफाइन कर रहे हैं. अल्लाह ताला फरमाते हैं अर्रिजालु कवामूना अलन्निसा, मेन आर द प्रोटेक्टर्स एंड मेंटेनर्स ऑफ वुमेन, नॉट वाइस वर्सा. एंड लाइक वाइज हदीस मुबारका में भी जेंडर रोल्स डिफाइंड है कि मर्दों के काम कौन से करने वाले हैं, औरतों के काम कौन से करने वाले हैं. इन्होंने ये करना है, इन्होंने ब्रेड अर्नर बनना है, प्रोवाइड करना है फैमिली को, ये करना है, नान नफका उठाना है, ठीक है, घर वालों का वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें क्लियर हैं. और साथ साथ कुरान मजीद ने ये भी बता दिया कि होमोसेक्सुअलिटी की पनिशमेंट्स हैं. लाइक कौम लूत का वाकया जो है वो हर बच्चे को मालूम है. यानी जब भी आप स्टोरीज ऑफ द प्रॉफिट्स पढ़ते हो, कौम लूत का जब तस्करा आता है, तो इट हैज़ अ कंसेंसस, यूनानिमस कंसेंसस है तमाम स्कूल्स ऑफ थॉट का कि होमोसेक्सुअलिटी इज अ कबीरा सिन, इट्स अ मेजर सिन इन इस्लाम, एंड वन ऑफ द मेजर सिंस जिसका अजाब सबसे ज्यादा शदीद मिला. यानी बाकी कौमों पे भी अजाब आए, जो हूद अलैहिस्सलाम की कौम थी, साले अलैहिस्सलाम, उन पे भी अजाब आए, लेकिन जो लूत अलैहिस्सलाम की कौम पे अजाब आया वो किसी पे नहीं आया. इट वॉज अ ट्रिपल पनिशमेंट, जहां पे बस्ती को शेक किया गया, चिंगाड़ की आवाज आई, उनको पलट के उल्टा दिया गया, और आसमान से पत्थरों की बारिश हुई इन पे. दिस इज हाउ एबहोरेंट द होल एक्ट ऑफ होमोसेक्सुअलिटी इज इन द साइट ऑफ अल्लाह सुब्हान व तआला, द वन हु क्रिएटेड मी एंड यू. इसी तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से आपने फरमाया कि अल्लाह की लानत हो ऑन दोज हु आर कमिटिंग होमोसेक्सुअल एक्ट्स, बल्कि ना सिर्फ उन पे लानत की है, उन पे यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत के लिए भेजे गए, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, तमाम जहानों की रहमत के लिए भेजे गए. और वो एक तो होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर और होमोसेक्सुअल्स पे लानत हुई हुई है, नंबर टू उन पे भी लानत की है जो क्रॉस ड्रेस करते हैं, मेन हु ड्रेस लाइक वुमेन एंड वुमेन हु ड्रेस लाइक मेन. उनके ऊपर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही आदी से मुबारका में आपने लानत की है उन लोगों के ऊपर जो अपने जो बायोलॉजिकल जेंडर है उससे अपने आप को कहीं और लेके जाते हैं. इसके साथ साथ कुरान मजीद में वो तमाम आयात जहां पे शैतान का जिक्र होता है कि शैतान अल्लाह ताला की खलकत को चेंज करने के पीछे पड़ा हुआ है, कि ही वॉन्ट्स टू चेंज द क्रिएशन ऑफ अल्लाह ताला, एनी प्रॉमिस अल्लाह सुब्हान तआला कि मैं इन्हें गुमराह करूंगा, मैं इनके आगे पीछे दाएं बाएं से आऊंगा, वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, और ये तेरे नाशुक्र निकलेंगे. तो खलकत किसी की जेंडर सर्जरी और वो करना तो दूर की बात है, टैटूज बनाना भी हराम है, कि आप अपनी स्किन को अल्टर कर दें परमानेंटली, इवन दैट इज हराम इन इस्लाम. तो लेट अलोन कि आप अपने पूरे के पूरे जेनिटल्स को रिमूव करवा दें. मुशरिकीन मक्का में अरब खवातीन का रिवाज था, वो अपने दांतों को शेप करती थी, यानी दांतों को ब्रेसेस लगवाना या दांतों को कोई सर्जरी करवाना बिकॉज ऑफ अ प्रॉब्लम, दैट्स ओके एंड एवरीबडी एग्रीज टू दैट. द पॉइंट वॉज कि उनके दांत ठीक होते थे, वो उनको सिर्फ शेप करती थी लाइक के नाइन्स, लाइक ऑल द टीथ आर पॉइंटेड. उनके वहां पे एक काइंड ऑफ एक रिवाज चल पड़ा कि ये खूबसूरती की अलामत है कि अपने दांतों को पॉइंटी बना देना. तो व्हेन दे स्टार्टेड डूइंग इट, उनको भी कहा गया कि ये एक्ट हराम है करना. दिस इज चेंजिंग द क्रिएशन ऑफ अल्लाह. जब अल्लाह ने तुम्हें दांत इस तरह से दिए, व्हाई आर यू चेंजिंग द क्रिएशन ऑफ अल्लाह? यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट. तो लेट अलोन दांतों को शेप करना, आप तो अपने पूरे के पूरे यानी पार्ट्स रिमूव करवाने अपनी बॉडी से. सो हाउ कुड इस्लाम, सो व्हेन यू से कि वी टॉक अबाउट राइट्स ऑफ एलजीबीटी एंड सो ऑन, प्लीज पहले इस्लाम पढ़ लो, पहले इस्लाम पढ़ लो, पहले कुरान पढ़ लो, पहले हदीस पढ़ लो, अल्लाह उसके रसूल ने क्या कहा हुआ है, उसके बाद एडवोकेसी करना. और मैं बताऊंगा कि पॉजिटिव एडवोकेसी क्या है. आई विल एक्सप्लेन व्हाट दैट इज. सो दिस इज द फर्स्ट थिंग. नाउ हियर कम्स द थर्ड जेंडर कोट एंड कोट, जिसको आप कहते हो इंटरसेक्स. नाउ द टर्म इंटरसेक्स, व्हाट डज दैट मीन? इंटरसेक्स एक बायोलॉजिकल कंडीशन है जहां पे एक बच्चा पैदा होता है तो वो बोथ जेनिटेलिया या पार्शियल जेनिटेलिया दूसरा भी उसके साथ होता है, और ये एक बायोलॉजिकल एबनॉर्मैलिटी होती है. बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह अगर मैं आपको ये कहता हूं कि हमारी कितनी उंगलियां होती हैं, पांच, किसी की छह हो सकती हैं. यस, ओके. सो स्टैंडर्ड क्या है? पांच. अगर किसी बायोलॉजी की टेक्स्ट बुक को उठाएंगे तो लिखा होगा कि ह्यूमन बीइंग्स हैव फाइव फिंगर्स ऑन ईच हैंड. यस, एंड दे हैव फाइव टोज. नाउ अल्लाह ताला ने भी बता दिया मेल और फीमेल पैदा होते हैं. एक्सेप्शन क्या? तो अल्लाह ताला ने कहा मेल एंड फीमेल. इसी तरह से हमें पता है कि जी पांच उंगलियां ही होती हैं, ठीक है, लेकिन कभी कभार छह उंगलियां भी हो जाती हैं. हाउ फ्रीक्वेंट इज दैट? इट्स वेरी रेयर, इट्स वेरी रेयर. बिल्कुल इसी तरह से जो इंटरसेक्स हैं, जो कि बोथ जेनिटेलिया के साथ कोई बच्चा अगर पैदा हो गया, एक एबनॉर्मैलिटी है, ये स्टेटिस्टिकली स्पीकिंग पॉपुलेशन का 0.017% होता है. दैट्स हाउ रेयर इट इज, 0.017. इतने कम होते हैं ये माशरे के अंदर. अच्छा, ये जो इंटरसेक्स हैं, इनमें भी इवेंचुअली सेक्स पता लग जाता क्या है, बिकॉज वो देखते हैं कि फ्रॉम वेयर द चाइल्ड इज यूरिनेटिंग, वो कैसे यूरिनेट कर रहा है, या फिर अगर बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं तो प्यूबर्टी में पता लग ही जाता है. बाय द टाइम द चाइल्ड हिट्स प्यूबर्टी यू फाइंड आउट एनीवे. एंड इस केस के अंदर कोई सर्जिकल प्रोसीजर्स और वो चीज़ें अलाउड भी हैं, बिकॉज दिस इज एन एबनॉर्मैलिटी एंड इसको एक नॉर्मलसी की तरफ लेके जाना है. जिस तरह अगर किसी के दांत बेचारे के टेढ़े हैं, वो सीधा करके ठीक कर रहे, तो कोई मसला नहीं इसमें. तो इसी तरह से किसी का अगर यानी एक्स्ट्रा कोई अपेंडेज वगैरह है और उसको रिमूव कराता है, तो वो नॉर्मल होना चाह रहा है, वो इसलिए नहीं कि वो कोई एक्स्ट्रा चीज़ है. तो इसी तरह से अगर कोई बच्चा जो है वो इस तरह से एबनॉर्मल होता है, तो वंस द यू नो इट इज एस्टैब्लिश बाय मेडिकल डॉक्टर्स एंड प्रोफेशनल्स कि हाँ ये बेसिकली मोस्टली इंक्लाइनिंग टुवर्ड्स मेल है, तो फिर उसको मेल ही ट्रीट किया जाता है, क्योंकि शरीयत के जितने भी अहकामात हैं वो मेल और फीमेल के लिए सारे के सारे ऐसे ही हैं. तो ऐसे लोगों को सपोर्ट भी करना चाहिए, उनको हेल्प भी करना चाहिए, उनको माशरे के अंदर स्पेस भी देनी चाहिए, उनको उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ठीक है, उनके साथ एक मोहब्बत वाला रवैया होना चाहिए, जो कि एक्चुअल बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है जिनके साथ. सो वी शुड ऑलवेज बी ऑन द फ्रंट फुट इन हेल्पिंग सच पीपल आउट, ठीक है, उनके लिए एम्पैथी होनी चाहिए. सो दिस इज नाउ इंटरसेक्स, जो मैंने आपको टर्म बता दिया. प्रीवियसली स्पीकिंग एक और टर्म थी ट्रांससेक्सुअल और एक और टर्म थी ट्रांसवेस्टाइट, जो अब यूज नहीं करते. आमतौर पे ये टर्म्स अब यूज नहीं होते, अब ट्रांसजेंडर की टर्म आ गई है. सो बिफोर आई डिफाइन ट्रांसजेंडर, लेट्स लुक एट ट्रांससेक्सुअल. ट्रांससेक्सुअल ये था कि एक ऐसा मर्द या औरत जिसने अपनी सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी करवाई है, यानी उसने बकायदा तौर पर अपनी, या तो अगर मर्द है उसने अपनी कैस्ट्रेशन करवाई है, जेनिटेलिया अपने रिमूव करवाए हैं मोस्ट प्रॉबली, ठीक है, मे बी इम्प्लांट्स करवाए हैं, ठीक है, चेस्ट के ऊपर, तो ये कहेंगे कि ये ट्रांसवेस्टाइट है, सॉरी ट्रांससेक्सुअल है. और एक औरत जो है जो कि अपने चेस्ट को रिमूव करवाती है, ठीक है, और वो भी कुछ सर्जिकल प्रोसीजर्स करवाती है, तो उसके जरिए कहा गया कि ये जो है ये ट्रांससेक्सुअल है, कि इसकी सेक्सुअल एक सेक्स सर्जरी हुई हुई है इसकी. तो या तो ये टर्म थी जो कि मैंने बताया ये अलाउड नहीं है, क्योंकि लोग बगैर वजह के भी करवा रहे थे. और सेकेंडली ट्रांसवेस्टाइट वो है जो क्रॉस ड्रेसर्स होते हैं, जिनको आजकल ड्रैग क्वींस कहते हैं, जो बेसिकली होते वो मर्द ही हैं लेकिन वो औरतों की तरह कपड़े पहन के अच्छा महसूस करते हैं, दे जस्ट क्रॉस ड्रेस. तो ये था कि जी ये ट्रांसवेस्टाइट है. अब ये हो गया, टर्म आ गया ट्रांसजेंडर. ट्रांसजेंडर क्या है? बेसिकली द टर्म सेज कि इफ यू फील अ सर्टन जेंडर देन यू आर दैट पर्टिकुलर जेंडर. जस्ट बिकॉज यू फील एंड लाइक फॉर एग्जांपल एक बच्चा है वो बायोलॉजिकल मेल है थ्रू एंड थ्रू, क्योंकि बायोलॉजिकल मेल होना सिर्फ आपके जेनिटल्स पर डिपेंडेंट नहीं है, आपकी डीएनए पर भी डिपेंडेंट है, आपके एक्स एक्स क्रोमोसोम से या एक्स वाई क्रोमोसोम से, दैट्स हाउ हार्ड वायर्ड इट इज. और मेल और फीमेल के जो डिफरेंसेस हैं वो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स में है, मेल्स एंड फीमेल के, यानी स्टार्टिंग फ्रॉम द पिच ऑफ वॉइस टू मसल मास, बोन डेंसिटी, हॉर्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स, ऑल ऑफ दीज थिंग्स add to it. तो इसलिए मेल एंड फीमेल इज नॉट द सेम. यस वी आर फ्रॉम द सेम स्पीशीज, लेकिन हमारे अंदर फर्क है और क्लियर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस दोनों साइड्स पे. कई काम ऐसे हैं जो औरतें कर सकती हैं, हम नहीं कर सकते. कई काम मर्द कर सकते हैं, औरतें नहीं कर सकती, उनके लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा. और कुछ काम वो करती हैं जो हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग है. तो अल्लाह ताला ने दोनों को एक खास तरीके से पैदा किया और इसी में खूबसूरती है. मर्दों की खूबसूरती मर्द होने में और औरतों की खूबसूरती औरत होने में. मर्दों की खूबसूरती औरत होने में नहीं है और औरत की खूबसूरती मर्दाना होने में भी नहीं है. सो अल्लाह ताला ने इन दोनों को इस तरह क्रिएट किया. लेकिन ट्रांसजेंडरिज्म जो टर्म है वो ये कहती है कि इफ यू फील लाइक यू आर अ सर्टेन जेंडर देन यू शुड बी दैट पर्टिकुलर जेंडर एंड पीपल शुड रिस्पेक्ट दैट फॉर यू एंड यू शुड बी ट्रीटेड एज दैट. हक बात तो ये है कि मैं एक मर्द हूं, ठीक है. हक बात तो ये है कि मैं एक मर्द हूं, बायोलॉजिकल मेल हूं. लेकिन अगर मैं अभी आपके सामने ये कहूं कि जी मैं आइडेंटिफाई करता हूं एज अ फीमेल एंड दिस इज कोट एंड कोट, वो कहते हैं दिस इज योर ट्रूथ, दिस इज माई ट्रूथ, आई एम अ फीमेल, ऑल ऑफ यू शुड प्ले अलॉन्ग विद मी. अच्छा, बहुत सारे मजहब हैं, बहुत सारे मजहब की डिफरेंट बिलीव्स हैं, ठीक है. वो फॉर एग्जांपल हिंदूज की अपनी बिलीव्स हैं, क्रिश्चियंस की अपनी है, जूस की अपनी है, मुसलमानों की अपनी है, कोई और सेटनिस्ट है उनकी अपनी बिलीव्स हैं. हर बंदा अपने अपने जगह पे खेल रहा है, ठीक है. हम ये लेकिन उसमें और इसमें क्या फ़र्क है? उसमें और इसमें फ़र्क ये है कि जितने भी मजाहब हैं डिफरेंट हैं, चाहे वो जितने भी कोई क्रेजी किस्म के उनके ख्याल हों, वो हमारे ऊपर थोपते नहीं हैं कि क्योंकि हम एक लेट्स से एक्स वाई जेड खुदा को मानते हैं, तुम सारे उसको मानो. And if you don't believe him, I will be very hurt because you're not accepting my truth. Nobody says that. But here they are expecting everybody to conform to your quote unquote truth. कि मैं जो अपनी हकीकत, यानी तुम सारे के सारे मेरे साथ पागल बन जाओ, यानी तुम लोग भी अपनी आंखों को बिलीव ना करो. आपको एक मर्द नजर आ रहा है, दाढ़ी नजर आ रही है, ठीक है, हाइट और बिल्ड नजर आ रही है, आवाज नजर आ रही है, और आपको कि नहीं आप औरत ही हैं. And you accept it. And don't say anything, otherwise I'll be deeply offended and hurt. The point of the matter is, science doesn't care about your feelings. Science, science होती है, biology, biology होती है. It speaks whatever it speaks, ठीक है? आपका DNA बता रहा है, आपकी genetics बता रही है, आपकी bone density बता रही है, आपका muscle mass बता रहा है, आपके genitals, सारी चीज़ें एक तरफ point कर रही हैं, आपका कद काट है, सारी चीज़ें. और इसके बावजूद अगर एक बंदा जो है वो एक और opinion लेता है और वो ये एक्सपेक्ट करता है कि सारे मेरे साथ प्ले अलोंग करें, देन दिस इज अदर देन द ट्रूथ. सो ये सबसे बड़ा मसला जो ट्रांसजेंडर मूवमेंट के साथ है. एक और इशू जो इसमें समझ आता है वो ये है कि इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं. नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द ट्रांस मूवमेंट आर दैट नाउ अमेरिका में तो ये चीज़ें और यूरोप में बहुत कॉमन हो रही है, हमारी तरफ ये आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है विद पीपल लाइक जो मैंने नाम लिया है डॉक्टर मैरब मोइज, इस तरह के लोगों के साथ ये चीज़ें आहिस्ता से यहाँ पे इंपोर्ट करने की कोशिश की जा रही है. अमेरिका में क्या प्रॉब्लम चल रहे हैं? बाथरूम्स का मसला चल रहा है कि मर्द बायोलॉजिकल मेल्स आर नाउ गोइंग इनटू फीमेल वॉशरूम्स वेयर दे आर टेकिंग शावर्स. आपको पता है वहां तो हया वगैरह वैसे कुछ नहीं है, तो वो तो जॉइंट शावर्स होते हैं, मर्द हैं या औरतें सारे ऐसे ही, वो कहते हैं ना खुला खाओ और नंगे नहाओ, तो यही काम चल रहा होता है. तो वहां पे अगर कोई मर्द घुस जाए तो कहते हैं ठीक है, अब वो अगर वो आइडेंटिफाई करे, एंड देर आर वुमेन नाउ हु आर कंप्लेनिंग कि वी आर अपसेट बिकॉज हमारी प्राइवेसी इन्वेड हो रही है, यानी क्योंकि वो नेकेड है, हमारे शावर में घुस आया है, वी कैन सी दिस पर्सन इज अ मेल, लेकिन कह रहे हैं नो नो आई आइडेंटिफाई एज अ फीमेल, डोंट वरी अबाउट इट. सो ये एक प्रॉब्लम जो है वहाँ पे उनको फेस करना पड़ा है. और आपको पता है किस तरह के केसेस भी है जहाँ पे एक लड़का जो अपने आपको ट्रांसजेंडर आइडेंटिफाई कर रहा था एक हाई स्कूल के अंदर, वो एक लड़कियों के बाथरूम में जाके उसने एक बच्ची जो है उसको जाके रेप कर दिया उसने. And he was identifying as a transgender female, although he was a male. और उसके बारे में बहुत केस बना और वो उसको स्कूल ने बहुत हश हश करने की कोशिश की कि नहीं नहीं ये तो ये हो गया वो हो गया. तो अब ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं. सो देर आर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज, वी हैवंट रियली थॉट इट थ्रू. लगता तो ये है कि हमने सोचा नहीं इसके बारे में. दूसरी बात, ये ट्रांसजेंडर्स इन स्पोर्ट्स, ये भी एक बहुत एपिक मसला बना हुआ है इस वक्त, क्योंकि बहुत सारे मर्द जो हैं वो औरत के तौर पर आइडेंटिफाई करके स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और सारे मेडल्स जीत रहे हैं. सो नाउ हो ये रहा है कि फेमिनिस्ट मूवमेंट और ट्रांसजेंडर मूवमेंट का आपस में टकराव हो रहा है पहली दफा. पहले तो ये आपस में सारे बहन भाई होके जिंदा रह रहे थे, लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि वुमेन स्पोर्ट्स में वुमेन्स को ओब्लिटरेट किया जा रहा है, ठीक है. सो देर इज अ ट्रांसजेंडर पर्सन जो कि मेल ट्रांजिशन टू अ फीमेल, लिया थॉमस के नाम से, उसने स्विमिंग के रिकॉर्ड तोड़ दी जाके, और औरतों को और मेंस कंपटीशन में व्हेन ही यूज्ड टू पार्टिसिपेट वो कोई नंबर 500 एंड समथिंग पे आ रहा था. और जब विमेन में आया पार्टिसिपेट किया ही बीट द लीडिंग फीमेल बाय अबाउट 38 सेकेंड्स. 38 सेकेंड्स जो है ना वो एक अरसा दराज होता है स्विमिंग में. स्विमिंग में होता है यानी आप 38 सेकेंड मतलब लिटरली एक दो लैप से हरा रहे हो आप. यानी वैसे होता था 1 सेकेंड 1.5 सेकेंड 2 सेकेंड चलो मैक्सिमम हो गया जी, इतने क्लोज होते थे कॉम्पिटिशन. लेकिन ये क्या हो रहा है वो फिनिश करके आराम से चिल कर रहे हैं और बाकी खवातीन भी स्विमिंग हो रही है. तो उस पर एक कभी यूरोपियन जो ना स्विमिंग फेडरेशन है उन्होंने एक्शन लिया कि जी वी विल नॉट अलाउ बायोलॉजिकल मेल जिनका सेक्स मेल था टू पार्टिसिपेट इन फीमेल स्पोर्ट्स इवन इफ दे हैव गॉन थ्रू सर्जरी. हालांकि इसकी सर्जरी नहीं हुई भी. इवन इफ दे हैव गॉन थ्रू सर्जरी वजह यह कि आप जिंदगी के 20-25 साल यू रीच प्यूबर्टी एज अ मेल, आपकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी जितना टेस्टोस्टेरोन भरा हुआ है और उसकी वजह से जितनी आपकी लंग कैपेसिटी हो चुकी है बिकॉज मैन हैव अ ग्रेटर लंग कैपेसिटी देन वुमेन, आपकी जो लंग कैपेसिटी हो चुकी है, जो आपका मसल मास बन चुका है, जो आपकी बोन डेंसिटी हो चुकी है, औरत तो उसके करीब करीब ही नहीं है. वो तो बेचारी फ्रेजाइल सी खवातीन है, उनके साथ तुम जाके वो कर रहे हो. इसी तरह से एमएमए फाइटर्स जा रहे हैं यानी अ मैन आइडेंटिफाइंग एज अ फीमेल पार्टिसिपेटिंग इन वुमेन्स मिक्स मार्शल आर्ट्स, इट्स लाइक वॉचिंग डोमेस्टिक वायलेंस ऑन टेलीविजन. लिटरली इट्स लाइक दैट बैड कि कोई मर्द जो है ना औरत को तफे छिक रहा है और सारे खुश हो रहे हैं. ओह वेरी गुड, आर यू क्रेजी, हैव यू लॉस्ट योर माइंड. अगर ये चीज वैसे नॉर्मली बताया जाए कि जी आज एक मर्द ने एक औरत पर तशद्दुद किया, पूरा कौम जो है वलवला यानी शोर हो जाता है. लेकिन नाउ इट्स मिक्स मार्शल आर्ट्स, मर्द औरत को पीट रहा है एंड एवरीबडी इज हैविंग अ गुड टाइम कि दिस इज गुड. ओके यार अब उसकी फीलिंग्स हर्ट ना हो जाए, उसकी फीलिंग्स हर्ट ना हो जाए, लड़की की बॉडी का बेड़ा गर्क करके रख दे वो, लेकिन फीलिंग्स उसकी हर्ट नहीं होनी चाहिए. सो दिस इज नाउ द क्रेजीनेस एंड देयर आर मेनी मेनी अदर स्पोर्ट्स जहां पे ये हो रहा है. हर लिटरली एवरी रिकॉर्ड इज बीइंग ब्रोकन इन वुमेन स्पोर्ट्स बाय मेन. सो टॉक अबाउट वुमेन्स राइट्स, वुमेन्स राइट्स आप तो वुमेन को ओब्लिटरेट कर रहे हो, सफाई हस्ती से मिटा रहे हो. और अल्हम्दुलिल्लाह देयर आर मेनी माशाल्लाह सेन वुमेन इवन इन द US जो अब अपनी आवाज उठा रही है और वो कह रही है वी विल नॉट हैव दिस नॉनसेंस एनी मोर. जिसका जी चाहता है आके करता है. एक तो बल्कि रैपर है जूबी आई थिंक नाम है उनका, इंग्लैंड में ही यानी ही लाइक वर्क्स आउट, ही इज क्वाइट बफ. वो एक वुमेन्स वेट लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन में गए, डेड लिफ्ट का कॉम्पिटिशन था, वहां गए और वैसे ही जस्ट वॉकड इन एंड ही इज अ बिग गाय. तो ही सेड सॉरी नॉट अलाउड, उसने कहा नो वेट आई आइडेंटिफाई एज अ वुमन. ओह ओके ओके. वो अंदर गया, उसने जाके डेड लिफ्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया औरतों का एंड बाहर आ कहते इससे ज्यादा तो मैं जिम में लगा लेता हूं. एंड करेंटली ही इज होल्डिंग द डेड लिफ्ट रिकॉर्ड. और वो जब बाहर आया उसने कहा नाउ आइडेंटिफाई एज अ मैन बिकॉज अकॉर्डिंग टू द LGBTQ मूवमेंट देयर इज समथिंग कॉल्ड बीइंग जेंडर फ्लूइड व्हिच मींस के यू कैन बी जेंडर फ्लूइड. आप अपना जेंडर जो है जब चाहे बदल लें. आप अभी आप सुबह के टाइम आप मर्द हैं, शाम को आप औरत हो जाए, सुबह फिर मर्द बन जाए आप. तो आप बिल्कुल जिस तरह बच्चे निक्कर बदलते हैं आप अपना जेंडर बदलते रहे, सुबह शाम जेंडर बदलें आप, कभी कुछ कभी कुछ. एक औरत जो है वो अपने आप को मेल आइडेंटिफाई करे, विरासत में हिस्सा ले ले, उसके बाद के नाउ आई एम अ वुमन. तो देयर आर मेनी थिंग्स दैट कैन एक्चुअली गो रॉन्ग इन दिस सिचुएशन. सो यहाँ पे क्या होता है और हमारे लिए पाकिस्तान में ये ट्रांसजेंडरिज्म जो है, दिस टाइप ऑफ मेंटेलिटी के पीपल शुड बी आइडेंटिफाइड एज व्हाटएवर दे से दे आर, दिस ओपन्स द डोर टू होमोसेक्सुअलिटी. क्योंकि होमोसेक्सुअलिटी पाकिस्तानी लॉ में तो मना है, इम्परमिसिबल है, हराम है. लेकिन अगर एक बंदा अपने आप को आइडेंटिफाई वुमन कर रहा है तो टेक्निकली इट वॉज अ मेल फीमेल रिलेशनशिप. यानी इफ देयर इज अ मैन ही नाउ आइडेंटिफाइज एज अ वुमन, कोई सर्जरी सुर्जरी कुछ नहीं हुआ, ही जस्ट आइडेंटिफाइज एज अ वुमन, हैज रिलेशनशिप विद अ मैन, तो टेक्निकली इट्स अ मैन विद अ वुमन. तो शरिया के अंदर यानी हमारे कानून के अंदर टेक्निकली ये मर्द और औरत का रिश्ता था. मसला ये हाउ डू यू डिफाइन अ वुमन, ये सवाल आता ना फिर कि औरत आप किसको जो ना किसको बोलते हो. तो हमारे यहाँ पे इन्होंने और फिर लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में जिक्र कर चुका हूँ. सो अब मैं आपको बताऊं कि जिस तरह ये ट्रांस जेंडर इन्होंने एक टर्म क्रिएट की, देर आर मैनी अदर टर्म्स दैट कैन ऑल्सो बी यूटिलाइज एंड गिवन इक्वल स्पेस जस्ट लाइक द ट्रांसजेंडर. फॉर एग्जाम्पल ट्रांस रेस, के आई आइडेंटिफाई ऑल्दो आई एम अ पाकिस्तानी आई आइडेंटिफाई एज अ सऊदी विच मीन्स के नाउ आई कैन आई एम एलिजिबल टू बिकम इमाम काबा, क्योंकि इमाम काबा होने के लिए सऊदी नेशनल होना जरूरी है. या अगर मुझे किसी किंगडम पे आना है, किंगशिप पे आना है, तो मुझे अपने आप को आइडेंटिफाई कर लूँ. या जिस तरह वो अमेरिका के अंदर हिस्पैनिक्स और अफ्रीकन अमेरिकन और उनकी बात करते हैं, तो अगर एक हिस्पैनिक कहता है कि आई एम एक्चुअली, मुझे आप बाहर निकालने की बात ना करो, मुझे इलीगल इमिग्रेंट ना कहें क्योंकि आई आइडेंटिफाई एज इटालियन अमेरिकन, तो उसकी रिस्पेक्ट की जाए इस बात पे। ट्रांस रेस वुड सीम मोर प्लॉजिबल इन फैक्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके वो लिंक तो बनता ही होगा उनके साथ, कहीं ना कहीं से तो मतलब कोई ना कोई कनेक्शन निकल ही आता होगा। इसी तरह से एक और चीज है जिसको कहते हैं ट्रांस एज, कि यू कैन बेसिकली बी एनी एज यू वांट टू बी, बिकॉज अगर हम लोग बायोलॉजी को डिनाई कर रहे हैं तो फिर एज भी तो बायोलॉजी का ही पार्ट है ना, तो आप डिनाई कर दें, जहां हमने जेंडर यानी उसके जेनिटेलिया को डिनाई कर दिया तो एज को भी कर दें। और आपको पता है देयर इज एन एक्चुअल ग्रुप आउट देयर जो अपने आप को ट्रांस एज कहते हैं, एंड दीज आर अ बंच ऑफ पीडोफाइल्स एक्चुअली, जो बेसिकली ही माइट बी लाइक अ 50 ईयर ओल्ड मैन, वो कहते हैं, और उसका एक रिलेशनशिप है एक 13 साल के बच्चे के साथ, तो कहते हैं आई आइडेंटिफाई एज ए 11 ईयर ओल्ड गर्ल, आई एम ट्रांसजेंडर एंड ट्रांस एज, तो यू कैन जज मी बिकॉज इन साइड आई फील लाइक एन 11 ईयर ओल्ड गर्ल, और दिस 50 ईयर ओल्ड मैन माइट बी हैविंग अ रिलेशनशिप with a 12 year old girl saying ke I identify as a 12 year old boy, so I'm trans age. Aur main aapko batau ye actual condition hai, mere pe ye fatwa lag chuka hai trans age hone ka. Mere jab main mere zamana jaliyat mein na, because I like to do crazy things and all that, to my friends used to accuse me ki tum jo hai na abhi tak bacche hi rahoge, yani kyunki tum harkatein sahi karte rehte ho, hansi mazak jokes wagera. So they would say that, and they actually looked it up and they found out that there's a condition called the Peter Pan syndrome, ki where a person doesn't really grow up, yani ki wo usi teenage mein rehta hai hamesha. To ye to ek proper condition hai jiske bare mein actually yani psychologists bhi baat karte hain ki yes it is a condition jahan pe some people do consider themselves ki hum is age ke upar hain, generally wo usi age mein comfortable feel karte hain, lekin agar iske upar aap karna shuru kare to fir aap soche ki koi 25 saal ka ladka jo hai wo under 18 khel raha hai, जी अंडर 18 खेल रहा है वो, तो कह रहे हैं कि भाई आप क्यों आ रहे हैं भाई आपके, आई आइडेंटिफाई एज अ 17 ईयर ओल्ड, मैं अंडर 18 हूं, तो फिर उसको भी स्पेस देनी चाहिए। तो फिर अंडर 18 के अंदर टूर्नामेंट्स में क्या हुआ करेगा, सारे डशकरे खेल रहे होंगे और बच्चे बेचारे तमाशा देख रहे होंगे, यार हमारा तो कोई चांस ही नहीं रह गया पीछे। अच्छा, इसी तरह से ट्रांस वेट भी हो सकता है, अगर हम बायोलॉजी डिनाई कर रहे हैं, लेट्स गो ऑल आउट राइट, सो ट्रांस वेट ये, और ये भी एक कैटेगरी है बाय द वे, पीपल हु माइट बी अ सर्टेन वेट बट आइडेंटिफाई as far less than their actual weight. So for example, अगर कोई boxing match हो तो I would be classified as a heavyweight. Imagine करें मैं किसी flyweight competition में हिस्सा ले लूँ जाके, who identify as flyweight, और जाके flyweight को फेंटी चढ़ाने शुरू कर दूँ, और जो कि 100 pound के, 105 pound के हैं, तो ये क्या जुल्म और ज्यादती नहीं है? तो वो भी कहेंगे कि सर ये तो ज्यादती है, ये क्या कर रहे हैं? मैं कहूँ नहीं यार, आप मुझे जज नहीं कर सकते, बिकॉज आई एम ट्रांस वेट, यू हैव टू रिस्पेक्ट इट, ठीक है? My feelings are way more important than biology and science and the truth with a capital T. So do you understand now ki ye kitna bada Pandora's box hai jisko ye khol rahe hain just because they wanted to somehow let the sexual revolution get some steam and take traction. So ye sari baatein hamare samne aati hai aur humse pata chalta hai ki waise to ye badi common sense ki baat lagti hai, lekin it seems like the world is running out of common sense. So the issue with the transgender movement is that they want everybody to pretend along with them. So when a person says ke I identify as so and so, literally what they're saying is I pretend to be so and so, ke although reality hai lekin I'm pretending to be this. Aur aapko pata hai choti umar mein jo hai na bacche to kuch bhi pretend kar lete hain, koi bachcha superman bana hoga, koi hulk bana hoga, koi spiderman bana hoga, to kya usko is tarah identify karna shuru kar de ke beta tum baki mein superman ho, jao chhat se chhlang maro jaake, tum spiderman ho, tum fulane ho. यानी वी हैव टू हैव सम कॉमन सेंस के बच्चे, और अब ये हो रहा है कि जो बच्चे बेचारे थोड़ा सा कोई ऐसी बात करते हैं, बच्चे तो बहुत इमेजिनरी होते हैं, अब बाहर ये हो रहा है कि जो काउंसलर्स और थेरेपिस्ट और साइकोलॉजिस्ट हैं वो बच्चों को यानी रोक भी नहीं सकते इसके ऊपर, दे हैव टू नाउ अफर्म इट, दे हैव टू अफर्म वॉट एवर जेंडर देयर सेइंग. सो ये एक और कैन ऑफ वर्म्स हमारे लिए खोल रहा है. सो मोस्ट चिल्ड्रन हु आइडेंटिफाई एज अ डिफरेंट जेंडर टू वॉट दे वर बॉर्न एज, दे इवेंचुअली ग्रो आउट ऑफ इट. यानी स्टेटिस्टिकल डेटा अगर आप उठा के देखें तो बच्चे अगर शुरू में थोड़ा सा, अगर एक मर्द है, एक मेल चाइल्ड है, उसमें थोड़ा सा जनानापन है, इवेंचुअली दे ग्रो आउट ऑफ इट. वंस प्यूबर्टी हिट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स चेंज. दूसरी बात ये कि जो लोग सर्जरी के थ्रू गुजरते हैं, कहा जाता था कि इसलिए सर्जरी करवाते हैं क्योंकि अदरवाइज दे वुड हैव किल्ड देमसेल्व्स, वो बेचारे खुदकुशी करके मर जाते हैं। और ऑल्दो जब आप स्टेटिस्टिकल डेटा देखते हैं तो सुसाइड रेट्स कोई कम नहीं होते पोस्ट सर्जरी, रादर दे आर इंक्रीजिंग आफ्टर सर्जरी। वंस दीज किड्स गो थ्रू सर्जरी, यानी एक्चुअली अपने जेनिटेलिया रिमूव कराते हैं, उसके बाद सुसाइड रेट डाउन नहीं जाते हैं, बढ़ जाते हैं बल्कि। तो व्हाई इज इट दैट यू आर स्टिल कंटिन्यूइंग विद समथिंग दैट इज शोइंग टू यू स्टेटिस्टिकली कि उसके कोई बेनिफिट्स नहीं हो पा रहे, सिवाय इसके कि आपके पॉलिटिकल एजेंडा जो है वो पुश हो रहे हैं, एंड इट्स नॉट ब्रिंगिंग यू रियल हैप्पीनेस एनीवे। रेट्स ऑफ चिल्ड्रन हु आर आइडेंटिफाइंग एज ट्रांसजेंडर हैव इंक्रीज्ड एक्सपोनेंशियली सिंस 2010, यानी एक मेन स्ट्रीम मीडिया में जिस तरह इसके बारे में हाइप बनती जा रही है, लोग बात कर रहे हैं, तो 2010 से इसके बारे में बहुत ज्यादा बच्चों ने आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया आउट ऑफ पीयर प्रेशर और वट एवर, बिकॉज नाउ उनको ऑप्शन दी जा रही है कि यू डोंट हैव टू कन्फॉर्म टू द जेंडर बाइनरी, यू कैन चूज वट एवर यू वॉन्ट टू बी। आई मीन इमेजिन हाउ अट्रैक्टिव दैट लुक्स टू अ चाइल्ड कि यू कैन बी वट एवर यू वॉन्ट टू बी, सुपरमैन, स्पाइडरमैन, बैटमैन, और अभी जेंडर्स जो है ना वो बाय द वे सिर्फ मेल और फीमेल के अलावा इन्फिनिट नंबर हो सकते हैं। यू कैन आइडेंटिफाई एज अ कैट ऑल्सो इफ यू लाइक, यू कैन आइडेंटिफाई एज अ डॉग, यू कैन आइडेंटिफाई एज एनीथिंग लिटरली, एंड पीपल शुड रिस्पेक्ट यू फॉर दैट, एंड यू कैन कम अप विद योर ओन प्रोनाउंस, जी, सर, व्हाटएवर, जो भी आप यानी करना चाहो, और पीपल उसको रिस्पेक्ट भी करें और उसको यानी आपकी ड्रीम और फैंटेसी के साथ दे शुड प्ले अलॉन्ग विद यू। सो व्हाट दीज किड्स नीडेड वाज साइकोलॉजिकल हेल्प, नॉट जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरीज टू बिकम समथिंग दैट दे थिंक दे आर। इसको जेंडर डिस्फोरिया कहा जाता था और आज भी कहा जाता है, यानी APA जो है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन जो है, उसके अंदर आज भी जेंडर डिस्फोरिया है, जहां पे एक बंदा अपने जेंडर जो जिसमें वो पैदा हुआ था उसके साथ कंफर्म नहीं कर पा रहा, उसके साथ एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया, यानी जिस बायोलॉजी के साथ वो पैदा हुआ है, जिस क्रोमोसोम के साथ वो पैदा हुआ है और जो वो फील कर रहा है उसमें अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो इसको साइकोलॉजिकली रिजॉल्व किया जाए, यानी खुद सोचे ना, विच इज एन ईजियर ऑप्शन। हमारे पास एक प्रॉब्लम है, हमारे पास अगर एक बच्चा आता है, लेट सपोज वो ये कहता है कि मैं मेल हूं बट आई फील लाइक अ वुमन, ठीक है, मेरी फीलिंग्स जो है, मेरे शौक जो है वो लड़कियों वाले हैं, तो अब मैं क्या करूं, मेरे लिए आसान ऑप्शन क्या है, इसकी सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी करवा दूं और कहूं कि तुम औरत ही हो, या इसको साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के जरिए, मेंटरिंग के जरिए, काउंसलिंग के जरिए, जिस चीज में वो बायोलॉजिकली है उसी के ऊपर अफर्म किया जाए। काउंसलिंग एंड ट्रीटमेंट इज वे इजियर एंड इसके साइड इफेक्ट्स वो नहीं है जो इसके हैं, क्योंकि एक दफा सर्जरी होगी उसको तब ख्याल आया कि सॉरी यार गलती हो गई मेरे से, देयर इज नो वे बैक नाउ, देयर इज नो वे बैक बिकॉज द डैमेज इज ऑलरेडी डन। ये प्रोसीजर्स रिवर्सिबल प्रोसीजर्स नहीं है, एक दफा हो गया इट्स डन एंड डस्टेड। और इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि आपने सिर्फ उसके जेनिटल अगर चेंज कर दिए, उनको कोई फॉर्म दे दी है जो कि सिर्फ सुपरफिशियल है, बाय द वे दिस इज नॉट गोइंग ऑल द वे इन, आपकी पूरी एनाटॉमी नहीं चेंज कर दी उन्होंने, सिर्फ सुपरफिशियली उन्होंने कोई प्रोसीजर्स किए हैं, ओनली सुपरफिशियल, उन्होंने आपका DNA चेंज नहीं किया, उन्होंने आपका मसल मास चेंज नहीं किया, उन्होंने आपकी बोन डेंसिटी चेंज नहीं की, उन्होंने आपके हार्मोनल लेवल्स शायद टीके शीके लगा के कुछ किया, लेकिन जो ऑलरेडी जिन हॉर्मोन्स पे आप ग्रो अप हुए हैं उससे जो आपकी डेवलपमेंट हुई है वो रिवर्स नहीं हो जाएगी उससे। सो इट्स नॉट गोना वर्क एनी वे इवन इफ यू गो विद दैट प्रोसेस, लेकिन इसको अब मेन स्ट्रीम किया जा रहा है। मोस्ट ऑफ दीज पीपल हु आर आइडेंटिफाइंग एज द अदर जेंडर, इसमें ज्यादातर अक्सरियत जो है वो फीमेल्स की है, यानी टीनेज गर्ल्स स्पेशली एट रिस्क हैं क्योंकि उनके अंदर ये पीयर प्रेशर के साथ कन्फॉर्म करना ज्यादा कॉमन है। खासतौर पर हमने देखा था कि जब ये लड़कियों में एनोरेक्सिया फैलना शुरू हुआ, सेल्फ हार्म शुरू हुई, तो वो पीयर प्रेशर की बेस पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आगे बढ़ी कि लड़कियां जो हैं वो सर्टन ग्रुप्स में अगर एक लड़की आइडेंटिफाई करती है कि यू नो आई एम टू फैट, आई एम ओवर वेट, हालांकि वो ठीक होगी, मतलब अपने वेट के हिसाब से ठीक होगी, लेकिन उसको समहाउ एक अगेन फोबिया सा क्रिएट हो गया कि नहीं मैं जो ना बहुत ज़्यादा मुझे जो ना प्रॉब्लम्स हैं, तो बाकी लड़कियाँ जो उसके साथ हैं पीयर ग्रुप में वो भी इस तरह आइडेंटिफाई करना शुरू कर रही हैं। एंड लाइक वाइज अगर एक सेल्फ हार्म कर रही है और उसको डिप्रेशन हो रहा है तो वो भी काइंड ऑफ पास ऑन कर रहा है एक दूसरे में। बिल्कुल इसी तरह से ये ट्रांसजेंडरिज्म जो है ये टीनेज गर्ल्स में बहुत ज्यादा लाइकली है कि उनमें ये चीज फैले और फैल रहा भी है जिस तरह के स्टेटिस्टिक्स बताते हैं। सो नाउ द स्टेटमेंट दे ऑफन यूज इसके एक कॉमन स्टेटमेंट कहते हैं कि ट्रांस वुमेन आर वुमेन, एक स्टेटमेंट बोलते हैं ट्रांस वुमेन, यानी वो मर्द जो कि औरत कह रहा है अपने आप को, एंड ट्रांस वुमन होने के लिए सर्जरी रिक्वायरमेंट नहीं है। बाय द वे You could be a completely 100% biological male and you could say I'm a trans woman and people should respect you. Iske liye koi injection aur teekon ki bhi zarurat nahi hai, bas aap identify kar dein, that's it. So wo kehte hain trans women are women, this is a statement they say. Now this statement itself is kind of incomplete, kyunki aap trans women are women, why are you saying that? Yani agar wo women hai to phir just leave it at that. Leave it at that. You know, everybody should be able to know what a woman is and what is not. But ab jab ye kehte ho ki trans woman is a woman, then this begs the question, what is a woman? Because aap trans women ko identify kar rahe ho as a woman, then what is a woman jo trans women hai? It's like the statement ki agar main ye kehta hu aapse, for example, ke hot dogs are dogs. To agar ye main statement bolta hot dogs are dogs, so you will ask me ke okay sir bhai, but what do you mean by a dog? ठीक है, हम आपकी बात मानते हैं, बट व्हाट यू मीन बाय अ डॉग? तो मैं कहता हूं, वेल इफ आई सेड यू कि अ डॉग इज बेसिकली एन एनिमल दैट वॉक्स ऑन फोर लेग्स, हैज केनाइन टीथ, डज दिस दिस दिस, इस तरह के बिहेवियर शो करता है, तो फिर आपको कि नहीं, फिर देन अ हॉट डॉग इज नॉट रियली डॉग, बिकॉज अ हॉट डॉग डजंट हैव फोर लेग्स एंड अ हॉट डॉग डजंट हैव केनाइन टीथ. ठीक है, बट इफ आई आइडेंटिफाई अ डॉग इज समथिंग एल्स, कि अ डॉग इज एनीथिंग दैट इज कंज्यूम्ड और ईटन और समथिंग, ठीक है, देन यस हॉट डॉग कुड बी अ डॉग. तो पहले आप डिफाइन तो करो डॉग क्या है. ठीक है, इसी तरह से मैं अगर आपको कहता हूं कि टॉय गन्स आर गन्स, टॉय गन्स आर गन्स, ओके लेट्स लुक एट दैट स्टेटमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय गन्स? इफ बाय गन यू मीन समथिंग, जब किसी एयरपोर्ट पर जाते हो लिखा होता है नो गन्स अलाउड, व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स समथिंग दैट होल्ड्स बुलेट्स, हैज गन पाउडर, यू पुल द ट्रिगर एंड अ बुलेट कम्स आउट एंड इट्स लीथल, दैट वेपन इज लीथल, इट कुड किल यू. That's what they mean by a gun. Now, does that include water guns? कि अगर एक बच्चा जो एयरपोर्ट में वाटर गन लेके घूम रहा है, तो नहीं नहीं पकड़ो उसको, हवाला हाथ में बंद कर दो. या वो कोई ऐसी वो नर्फ गन या लेजर गन लेके फिर रहा है ऐसे जो है ना वो, तो उसको तो नहीं अरेस्ट किया जाएगा. तो व्हाट डू यू, व्हेन यू से टॉय गन्स आर गन्स, व्हाट डू यू मीन बाय गन्स? पहले ये आइडेंटिफाई करो. अगर आप ये कहते हो कि गन कुड बी एनीथिंग दैट लुक्स लाइक दिस, ओके फाइन, देन आई कैन एक्सेप्ट इट. सो नाउ व्हेन यू से ट्रांस वुमेन आर वुमेन, व्हाट आर यू सेइंग? हाउ डू यू डिफाइन अ वुमन? क्योंकि अभी तक यानी इंसानी पूरी तारीख उठा के देख लें, अप अंटिल द लास्ट लाइक वॉट 50 ईयर्स, वुमन वॉज अंडरस्टूड. वुमन क्या है? वुमन वॉज ए बायोलॉजिकल फीमेल दैट हैज द एबिलिटी टू गिव बर्थ, ठीक हैज द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस इन इन दैट परस्पेक्टिव. सो जब ये यानी अब उनको वो कहते हैं वुमेन को, अब कहते हैं बर्थिंग पर्सन कहना शुरू कर दिया उन्होंने. बर्थिंग पर्सन या उससे भी वर्स्ट डेफिनेशन, मेंस्ट्रुएटिंग पीपल, दीज आर द टर्म्स नाउ यूज फॉर वुमेन. यानी औरत का जो मकाम था उसको आपने बस यहां डाल के रख दिया. सो नाउ दिस इज बिकम इवन मोर प्रॉब्लमैटिक, के जहां पे अब आपने यही, और आपको पता है कि अमेरिका में इस वक्त यानी देर हैविंग अ वेरी हार्ड टाइम डिफरेंट, आप उस पर देखो कि वो औरत को डिफाइन नहीं करते, औरत की बात बहुत करते हैं लेकिन औरत को डिफाइन, उनसे आप किसी से पूछ लें तो उनको मौत आना शुरू हो जाती है कि व्हाट आर दे सेइंग, हाउ कैन बी define a woman, because there are so many men, quote unquote males, who are identifying as women. So hum isko ab kis umre mein leke aaye? Ab koi banda bhi jo upar se surkhi powder laga ke apne aap ko aurat keh de, usko aurat maan liya jaye, usko aurat treat bhi kiya jaye, usko women sports mein bhi competition mein hissa lene diya jaye. So this is now becoming something that is a huge problem. So medical community jo hai, it is very quick to affirm gender now. Yani ho ye raha hai ki jo psychologist hain unko puri ek campaign chal rahi hai jahan pe unko is tarah se treat kiya ja raha hai कि आप लोग, बच्चा जैसे ही आगे कहता है कि आई फील लाइक अ वुमन, यू जस्ट अफर्म इट, बजाय उसको सवाल पूछना, काउंसलिंग करना, नहीं, स्ट्रेट अवे जो वो कह रहा है उसकी बात मानो और उसको आप अफर्म करो कि जो वो जेंडर कह रहा है वो वही है, एज अपोज टू जो पहले होता था रिपेरेटिव थेरेपी या हार्मोनल थेरेपी या किसी और किस्म की चीज़ें. रिपेरेटिव थेरेपी में कुछ नेगेटिव चीज़ें भी थी, उनको माइनस करके, यानी शॉक ट्रीटमेंट एंड वो हम उसको एडवोकेट नहीं करते, लेकिन जहाँ काउंसलिंग और मेंटरिंग की बात है वो तो होनी चाहिए डेफिनेटली, कि काउंसलिंग करें, मेंटरिंग करें, शायद हार्मोन जो ना ट्रीटमेंट भी देनी पड़ जाए उसको, और उसके जरिए उसको एक अच्छे अंदाज में वापस उसी अलाइनमेंट पे लेके आया जाए जिस पे वो पैदा हुआ था. दूसरी चीज़ ये कि यही जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, कोई बच्चा भी जो आइडेंटिफाई करता है एज ट्रांस, एक काम जो वो फौरन से करते हैं, वो करते हैं उसको प्यूबर्टी ब्लॉकर्स पर लगा देते हैं. एंड प्यूबर्टी ब्लॉकर्स बेसिकली एक लूप्रॉन के नाम से एक ड्रग है, विच इज एक्चुअली यूज फॉर केमिकल कैस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल्स. रेपिस्ट वगैरह जो होते हैं ना, जिनको केमिकली कैस्ट्रेट किया जाता है, उनको लूप्रॉन दिया जाता है. ये बच्चों को लूप्रॉन देते हैं कि उनकी प्यूबर्टी को रोकने के लिए. तो वही कहते हैं कि ओके सो स्वीडी, इफ यू आर फीलिंग लाइक अ गर्ल राइट नाउ, सो लाइक देयर इज अ बॉय हुज 7 एंड वो आइडेंटिफाई कर रहा है कि यू नो आई फील लाइक अ वुमन एट टाइम्स, तो कहते हैं ओके सो इफ यू फीलिंग लाइक अ वुमन, व्हाई डोंट यू वेट इट आउट. यानी इंस्टेड ऑफ, मैंने आपसे कहा था कि अलॉट ऑफ किड्स दे ग्रो आउट ऑफ इट एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी आती है तो अक्सर अक्सरियत के मसाइल हल हो जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं लेट्स डिले द प्रोसेस ऑफ प्यूबर्टी, आपको प्यूबर्टी ब्लॉकर्स देते हैं, केमिकल कैस्ट्रेशन वाले ड्रग्स देते हैं ताकि आप 17, 18, 19, 20 साल की उम्र में प्यूबर्टी होगी आपको, और इसका नुकसान क्या होगा कि प्यूबर्टी इज असेंशियल फॉर योर ग्रोथ, फॉर योर डेवलपमेंट, आपकी आपके मसल उस तरह ग्रो नहीं होंगे, आपकी बोन्स उस तरह ग्रो नहीं होंगी। सो एक मर्द जो था प्यूबर्टी ब्लॉकर्स पे, आपने उसको रोका हुआ, उसकी ग्रोथ स्टंट हुई हुई है 20 साल में, आप कह रहा है यप आइडेंटिफाई अ मैन, नाउ यू टेक हिम ऑफ द प्यूबर्टी ब्लॉकर्स, ही माइट नॉट बी एबल टू हैव सेक्सुअल रिलेशंस ऑल हिज लाइफ, ही इज डन फॉर, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इस किस्म के रिजल्ट आ रहे हैं। सो इट्स अ वेरी विशियस साइकिल जिसके जिसके अंदर बच्चों को डाला जा रहा है। लोग हमसे पूछते हैं तकलीफ इसलिए होती है क्योंकि आप हमारे बच्चों पर हमला कर रहे हैं, आप हमारे बच्चों को मेंटल पेशेंट्स बना रहे हैं, आप उनको वो चीजें सेल कर रहे हैं जो सेल करना बनता नहीं है किसी भी वे शेप और फॉर्म में, एंड यू योर सेल्फ डोंट हैव अ क्लू व्हाट यू टॉकिंग अबाउट, एंड येट यू आर स्टफिंग इट डाउन आवर थ्रोट्स एज इफ दिस इज द गॉस्पल ट्रूथ, कि ये कोई कैपिटल टी के साथ ट्रूथ है, और सारों को कन्फर्म करवा रहे हो आप, बच्चों को इतनी यंग एज से आप सेक्सुअलाइज कर रहे हो, कह रहे हो जी सेक्स एजुकेशन 2 साल के 3 साल के 4 साल के बच्चों को बताना शुरू करो कि योर जेंडर कुड बी अदर देन व्हाट यू वर बॉर्न एज, सो दिस इज व्हाई इट अपसेट्स अस। सो ये चीजें हो रही हैं, एंड सो दे आर वेरी क्विक टू पुट पीपल अंडर द नाइफ, यानी कोई बच्चा भी आके कहता है, यानी कई अमेरिका में स्टेट्स हैं जहां 16 साल की उम्र में आप जाके अपनी जो है सेक्स चेंज सर्जरी करवा सकते हैं बगैर पेरेंटल कंसेंट के, यानी क्लब और डिस्को में जाने के लिए आपको 21 साल का होना जरूरी है, शराब कंज्यूम करने के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए, बाकी चीजों के लिए पेरेंटल कंसेंट और ये चीजें चाहिए, सेक्स चेंज सर्जरी करवाने के लिए नहीं चाहिए इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स। और उसमें क्या होगा, मस्टेक्टमी होगी जिसमें चेस्ट जो है ना एक औरत की रिमूव हो जाएगी, या फेलोप्लास्टी होगी जहां पे वो एक फेक मेल जेनिटल अटैच करते हैं उनके साथ, फेक मेल जेनिटल विच इज ग्राफ्टेड फ्रॉम देयर ओन स्किन, यानी अपनी फोरआर्म की स्किन से या थाई की स्किन काट के दे मेक समथिंग सुपरफिशियल दैट लुक्स लाइक द मेल जेनिटल एंड दे अटैच इट, हैज नो रियल पर्पस बाय द वे। दिस इज व्हाट यू वांट आवर किड्स टू गो थ्रू। आई मीन मैं रियली चाहता हूं कि ये जो सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी की वीडियोस है ना, ये नेशनल टीवी पे दिखानी चाहिए ताकि लोगों को पता चले, वो डिस्गस्ट हो के यार इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये क्या कर रहे हो आप लोग, व्हाट आर यू डूइंग। यानी जो मैंने आपको पहले बात बताई थी कि जहां पे कोई मेडिकल कंडीशन है वी अंडरस्टैंड दैट, लेकिन जो बंदा भी आइडेंटिफाई कर दे आप उसका तिया पांचा करके रख दें विद ऑल ऑफ दीज ट्रीटमेंट्स, वैजिनोप्लास्टी, कैस्ट्रेशन, ये सारी चीजें हो रही है वहां पर। सो द होल मेडिकल प्रोफेशन हैज चेंज्ड सो ड्रास्टिकली के बाकी तमाम चीजों को छोड़ के सिर्फ इस मसले पे जो पेशेंट कहेगा वही डॉक्टर करेगा। कभी ऐसा हुआ किसी प्रोफेशन के अंदर, यानी आप डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर को खुद डायग्नोसिस करके बताएं आप अपना, आपके डॉक्टर साहब मुझे दिल का मसला है, मुझे स्टंट डालें, डॉक्टर कहेगा दिमाग सही है आपका, सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर है, गोली खाओ निकलो यहां से। लेकिन इस मामले में बच्चा कहता है डॉक्टर साहब प्लीज, फॉर एग्जांपल एक बच्ची कहती है प्लीज रिमूव माय ब्रेस्ट, डॉक्टर कहेगा श्योर नो प्रॉब्लम कम, क्योंकि मैं तो क्वेश्चन भी नहीं कर सकता आपको, मैंने क्वेश्चन किया मेरा लाइसेंस ले लेंगे। एक लड़का आता है 16 साल, कहता है प्लीज रिमूव माय जेनिटल्स, बिस्मिल्लाह आओ आओ, इफ आई इवन यानी इफ द डॉक्टर इवन रिकमेंड्स हिम टू अ साइकियाट्रिस्ट ही कुड लूज हिज लाइसेंस, कि आपने क्यों कहा कि इसको साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है, आप अफर्म करें उसके जेंडर को, अफर्म इट, जेंडर एफर्मेशन, दैट्स व्हाट दे कॉल इट। एंड सो नाउ द डॉक्टर्स एंड फिजिशियंस आर बीइंग बुलीड इनटू दिस, और ये सब कुछ कराने के बाद, ये सारे प्रोसीजर होने के बाद, डज दिस इवन गारंटी यू हैप्पीनेस, यानी क्या कोई स्टेटिस्टिकल डेटा उठा लेते हैं, ये जितने लोगों की सर्जरी हो रही है, एक 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 वेबसाइट है sexchangeregret.com, sexchangeregret, उसमें हजारों लोगों की कहानियां हैं जिन्होंने अपनी सर्जरी करवाई एंड दे रिग्रेटेड इट एंड दे बिकेम इवन मोर सुसाइडल देन दे वर बिफोर, क्योंकि आपको पता लग गया कि ठीक है मैंने कुछ अपेंडेजेस अपनी चेंज करवाई हैं बट दिस डजंट मेक मी हु आई वांटेड टू बी, हु एम आई फूलिंग, जस्ट बिकॉज मैंने अपनी ग्राफ्टिंग करा के कुछ चीज अटैच करवा दी डज दैट मेक मी अ मैन नाउ, रियली डज इट, एक बंदा अपनी सर्जरियां करा के नाउ डू एम आई रियली अ वुमन, कैन आई गिव बर्थ टू अ चाइल्ड, ऑफकोर्स नॉट। सो दिस इज नाउ द प्रॉब्लम दैट दे फेस, के इवन आफ्टर दीज थिंग्स वो स्टिल बेचारे और जो है ना बदतर हो जाते हैं। अब तो स्कूलों में भी पुश किया जा रहा है, स्कूलों में बाहर पढ़ाया जा रहा है बकायदा तौर के ऊपर, के जो है ना मल्टीपल जेंडर्स होते हैं, कोर्स करिकुलम की इधर चीज़ें आ चुकी हैं, बहुत सारे स्कूल बोर्ड्स हैं जो किताबें शाया कर रहे हैं हाउ कैन यू मेक योर करिकुलम मोर LGBTQ इंक्लूसिव, नेट के ऊपर अगर आप देखें, डिज्नी को आप जो है ना उठा के देख लें, नेटफ्लिक्स को देख लें, दे क्रिएटिंग कॉन्टेंट इन बल्क लोड्स प्रोमोटिंग द सेम टाइप ऑफ बिहेवियर. डिज्नी के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स, अभी जो रिसेंटली बज़ लाइटियर उन्होंने बनाया, द आउल हाउस का एक शो उनका चलता है जिसमें मेन सेंट्रल कैरेक्टर होमोसेक्सुअल, जुरासिक पार्क का इनका एक आजकल चल रहा है कार्टून, उसमें भी उन्होंने दिखाया कि एक लेस्बियन कपल है, बच्ची हैं, दो लेस्बियंस हैं, सुपरमैन को उन्होंने होमोसेक्सुअल कर दिया, और अभी जो है वो स्पाइडरमैन को भी करने लगे हैं, मार्वल जो है वो सोच रहा है कि स्पाइडरमैन को भी गेक बना देते हैं. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर हैपनिंग एंड इट्स नॉट अ प्रॉब्लम एनी मोर फॉर देम, बिकॉज वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे ये कॉन्टेंट पढ़ें, सीखें और सुने, और अपने हीरोज को, रोल मॉडल्स को देखें कि दे आर ऑल्सो ट्रांजिशनिंग इन टू अदर जेंडर्स एंड सो ऑन. हमारे पाकिस्तान के अंदर एक ट्रांसजेंडर पर्सन एक्ट पास हुआ था 2018 में, और उसमें जो ट्रांसजेंडर पर्सन की डेफिनेशन थी वो वही थी कि जी एनी वन हु आइडेंटिफाइज एज, यानी पहले लिखा कि जी वो लोग जो इंटरसेक्स हैं, वी एग्री टू दैट, नो प्रॉब्लम, वी से चुके. कोई बंदा जो किसी एक्सीडेंटल तौर पर कैस्ट्रेट हो गया हो, हादसाती तौर पर कैस्ट्रेट हो गया हो, या कोई मसला हो गया हो, उसका लिख दिया, इस पर चलो डिबेट हो सकती है. और तीसरा था एनी वन हु आइडेंटिफाइज, एंड दिस इज वेयर द प्रॉब्लम लाइज, कि ये जो है ये इस्लाम के बिल्कुल खिलाफ बात है. कोई भी बंदा आइडेंटिफाई करता है ये एग्जैक्टली वही है, और वो जो है ना यूएस एम्बेसी की तरफ से और यूएन की तरफ से इनको शाबाशियां मिल रही है कि इतनी जल्दी तो हमने नहीं माना था जितना आप लोग जल्दी मान गए. इतना तो हमने भी कहा था किसी कोई मेडिकल बोर्ड होना चाहिए जो बैठे, तो आपने वही भी रखा, बस किसी सिंपली किसी के कहने पर आप बात मान रहे हैं. सो दिस इज वाई थिंग्स आर नाउ बिकमिंग वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड. तो इसके अगेंस्ट जो है अब एक बिल पास किया गया है जिसके ऊपर जो है ना बहस चल रही है, जो 2021 का बिल है, जिसमें अब इन चीज़ों को कुछ रीडिफाइन किया है, कुछ कंडीशंस डाली हैं कि इस तरह से ओपन एक्सेस किसी को भी नहीं है, नोबडी हैज दिस टाइप ऑफ ओपन एक्सेस. सो इंशाल्लाह सम सेंस हैज प्रिवेल्ड, एंड इंशाल्लाह वी होप के इससे कोई बेहतर पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे. सो बॉयज, दैट वाज द कंक्लूजन टू पार्ट वन. अभी हम इंशाल्लाह इन कंक्लूजन जो बात कर रहे हैं वो ये है कि अब हमें क्या करना चाहिए, नाउ दैट वी नो वॉट द LGBTQ एजेंडा इज अबाउट, वॉट द मूवमेंट इज अबाउट, और हमने जो कन्फ्यूजन्स हैं वो दूर की हैं between different terms like transgender, transsexual, transvestite, and jo concept hai ke can a person actually identify as whatever they want to identify. Acha ye jo LGBTQ movement hai isme ek aur cheez jo aapko milta hai ki normally ek hi umbrella term transgender ke andar bahut kuch merge kar diya jata hai, to usme dekhen jab ye kehte hain LGBT and Q, what are these terms? Like L basically keh rahe hain lesbians, gays, bisexuals, transgenders, and Q is questioning ya queer. So kya agar hum from an Islamic perspective baat kare lesbianism, kya Islam usko endorse karta hai? The answer is no. Kya homosexuality ko ya gays ko jo hai wo endorse karta hai? The answer is no. Agar aap baat karte hain bisexuals ki, tab bhi usko bhi Islam endorse nahi karta. Peeche reh gaya transgender, wo maine aapko bata diya, wo terminology jo hai wo confusing terminology use karte hain, aur peeche reh gaya queer questioning ke you have no idea who you are. In panchon ki cheezon ke andar intersex nahi hai. और आपको पता है कि इंटरसेक्स मूवमेंट के जो लोग हैं वो ऑफेंडेड फील करते हैं कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी हमारे लिए कुछ नहीं करती, यानी जो पीपल विद एक्चुअल बायोलॉजिकल कंडीशंस, दे आर बीइंग मार्जिनलाइज्ड एंड लेफ्ट आउट बाय द सो कॉल्ड ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो अपने आप को यूं आइडेंटिफाई कर रहे हैं. मैं आपके सामने दो बुक्स के हवाले देता हूँ. एक तो किताब यहाँ मेरे पास पड़ी हुई है हेलन जॉयस की, इसका नाम है ट्रांस व्हेन आइडियोलॉजी मीट्स रियलिटी, एंड आई हाईली रिकमेंड दिस बुक बिकॉज इसमें इन्होंने, ये अब एक अमेरिकन ऑथर हैं जिन्होंने बड़े ओपनली डिस्कस किया कि जो ट्रांस मूवमेंट है वो किस तरह से वुमेन्स राइट्स को भी सैबोटाज कर रही है, एंड हाउ इट इज़ एक्चुअली अफेक्टिंग अस सोशली इन अ नेगेटिव वे. ठीक है, एक ये किताब है. एक और किताब है, उसका नाम है इररिवर्सिबल डैमेज बाय एबिगेल श्रायर, और उस किताब में भी उन्होंने बेसिकली मैंशन किया ख़ास तौर पर उन टीनेज गर्ल्स के बारे में हु गो थ्रू सर्जरी एंड आफ्टर सर्जरी दे फील मिजरेबल. तो वो कहती है, उस बुक का नाम ही इररिवर्सिबल डैमेज है, कि ये डैमेज जो आपने कर दिया ये अब चेंज नहीं हो सकता. अच्छा, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे लिए अब हमारे लिए वे फॉरवर्ड क्या है, व्हाट्स द वे फॉरवर्ड. नंबर वन चीज़ ये है अवेयरनेस. वी नीड टू नो व्हाट दिस मूवमेंट इज़ अबाउट. वी नीड टू नो इस्लामिकली हमारा स्टैंड पॉइंट क्या है. हमें पता होना चाहिए कि जो लोग एक्चुअल प्रॉब्लम से गो थ्रू कर रहे हैं, लाइक द इंटरसेक्स पीपल जिनके साथ मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हैं, उनके साथ हमारा क्या रवैया होना चाहिए, किस तरह कंपैशन से डील करना चाहिए, इनको स्टिग्मेटाइज नहीं करना चाहिए, उनको हरास नहीं करना चाहिए. मैं आपको अपने फैमिली का एक वाकया बताता हूँ. हमारे फैमिली में एक्सटेंडेड में एक शख्स है जो कि कोट एंड कोट इस ट्रांसजेंडर की डेफिनेशन पर पूरा उतरेगा. समबडी हु इज़ अ बायोलॉजिकल मेल बट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेज आपको लगेगा कि वो उसके अंदर फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज़्यादा हैं, लाइक आवाज़ और चलने का अंदाज, बात करने का तरीका, आपको लगेगा थोड़े से फेमिनिन क्वालिटीज़ हैं। अगर वो बंदा अमेरिका में होता अभी तक उसकी शायद जेंडर की रिसाइनमेंट सर्जरी भी हो चुकी होती और शायद वो भी उसको रिग्रेट भी कर रहा होता, लेकिन हमारे जब वो साथ रहा तो हमारे ही एक जानने वाले जो हैं उन्होंने उसको एम्प्लॉय कर लिया एज ए टेलर, और अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारी फैमिलीज़ में स्टिचिंग और कपड़ों का उसका काम करता है, और अल्हम्दुलिल्लाह उनको इन्हीं दो चार फैमिली से सारा साल बिजनेस मिलता रहता है ज़बरदस्त किस्म का। एंड दिस पर्सन इज़ अ बायोलॉजिकल मेल, ही ड्रेसेस लाइक अ मैन, ही गोज़ टू प्रे नमाज एंड एवरीथिंग माशाल्लाह, और उसकी शादी भी हो चुकी है और उसके तीन बच्चे भी हैं। सो आई कैन अंडरस्टैंड कि इट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर हिम बट नॉट इम्पॉसिबल। अल्लाह ताला फरमाते हैं ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह किसी को भी उसकी कैपेसिटी के ऊपर टेस्ट नहीं करता। इज लाइफ डिफिकल्ट फॉर पीपल लाइक दिस? एब्सोल्युटली इट इज़। शुड वी बी सपोर्टिव ऑफ देम एंड ट्राई टू हेल्प देम एडजस्ट बैक इन टू सोसाइटी इन अ नॉर्मल वे? येस वी शुड। क्या उनको भगाना चाहिए? क्या उनसे डरना चाहिए? और ये जो टर्म्स यूज करते हैं ना कि हम कोई भी बात करें आप लोग ट्रांसफोबिक हैं, आप होमोफोबिक हैं, सीरियसली दीज आर नॉट इवन फोबियाज। अगर आप इसको किसी साइकोलॉजिकल मैनुअल में पढ़ेंगे, होमोफोबिया इज नॉट रियल फोबिया, यानी द फियर ऑफ होमोसेक्सुअल्स। और हमारे भी कोई कहते हैं ना हम कोई बात करें इस टॉपिक पर आप होमोफोबिक हैं, डू यू थिंक आई एम अफ्रेड ऑफ होमोसेक्सुअल्स? डू यू थिंक आई एम अफ्रेड ऑफ पीपल हु आर ट्रांसजेंडर? आई एम नॉट अफ्रेड, ठीक है। रादर हमारे पास लोग ऐसे आते हैं काउंसलिंग करने के लिए, हेल्प लेने के लिए। वी हेल्प देम, वी एम्पथाइज विद देम, वी गाइड देम। हम कोशिश करते हैं इनकी मदद कैसे की जा सकती है, इनकी नॉर्मल लाइफ कैसे हो सकती है, इनके जो चैलेंजेस हैं, जो हर बंदे पे चैलेंजेस डिफरेंट हैं, मेरे पे जो चैलेंजेस हैं वो डिफरेंट हैं जो आप पे हैं, और वो किसी गरीब शख्स पे चैलेंज है वो डिफरेंट है। तो हम कोशिश करते हैं कि जिस बंदे का जो चैलेंज है हम उसको उसमें असिस्ट करें, उसकी हेल्प करें उसमें, ना कि उसको किसी गुनाह की तरफ लेके जाएं कि इसका इलाज यही है कि तुम गुनाह की तरफ चले जाओ। एंड दिस प्रॉब्लम गुड वेरी वेल बी विद हेटरोसेक्सुअल मेल ऑल्सो। एक हेटरोसेक्सुअल मेल है, उसको हो सकता है हार्मोनल मसला भी हो, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बहुत आए हैं उसके, और वो कहे कि जी मैं नहीं रह सकता, मैंने आई हैव टू कमिट ज़िना, आई हैव टू कमिट अडल्ट्री, मैंने करना ही करना है भाई, मेरा देखिए हार्मोनल इंबैलेंस हुआ हुआ है, मैं नहीं कंट्रोल कर सकता अपने आप को। तो मैं ऐसा क्या कहूँ? हाँ यस, गो एंड डू व्हाट यू हैव टू डू, आई अफर्म यू, गो अहेड एंड डू। नो आई विल नेवर आस्क हिम टू डू दैट। एक बंदा कहता है नहीं मैं इतना फ्रस्ट्रेट हुआ हूँ मैंने किसी को रेप ही करना है जाके, तो मैं ऐसा क्या कहूँ तुम्हारे लिए जायज़ हो गया ये? बिल्कुल भी जायज़ नहीं हो सकता। इट्स यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट। तुम्हारे भी लिए भी वही हुक्म है कि लोअर योर गेज एंड गार्ड योर मॉडेस्टी। चाहे जितने मर्जी आप चीज़ें साइड करें कि नहीं नहीं मेरे फीलिंग्स ऐसी हैं, इवन मैं तो फीलिंग्स छोड़ के कह रहा हूँ उसके साथ बायोलॉजिकल मसला भी हो कि एक्चुअली उसका हार्मोनल इंबैलेंस हुआ हुआ है और वाकई में वो अपनी लस्ट और डिज़ायर कंट्रोल नहीं कर सकता, फिर भी उसने कंट्रोल ही करना है। हर बंदे के लिए उसकी इस्तेआत के मुताबिक अल्लाह ताला उसको टेस्ट करते हैं। सो वी हैव टू लिव विद इन द बाउंड्रीज ऑफ शरिया एज मुस्लिम्स, हमें काम करना है। सो मैं कोई भी बंदा जो इस डिबेट पे, इस टॉपिक पे बात करता है, सबसे पहला सवाल मेरा ये होता है कि आप मुझे पहले ये क्लैरिफाई कर दें कि मुझसे आप एज अ मुस्लिम बात कर रहे हैं या एज अ नॉन मुस्लिम बात कर रहे हैं, पहले ये मुझे क्लियर करें। अगर तो आप एज अ मुस्लिम बात कर रहे हैं तो कोई मशवरा आप ऐसा नहीं दे सकते जो इस्लाम के खिलाफ है। अगर आप एज अ मुस्लिम बात कर रहे हैं फिर आप ये नहीं कह सकते कि नहीं इन लोगों को होमोसेक्सुअल बनने दो, इन लोगों को फलां काम करने दो, फिर आप ये नहीं कह सकते। और अगर आप एज अ नॉन मुस्लिम बात करें फिर जो मर्जी बोलते रहो, आई डोंट नीड टू टेक यू सीरियसली, बिकॉज वाई आई एम आई टेकिंग माई मॉरल्स एंड एथिक्स फ्रॉम यू? आई शुडंट। आई एम टेकिंग माई मॉरल्स एंड माई एथिक्स फ्रॉम द कुरान एंड द सुन्ना। और मैं आपको बताऊं, मैंने जो ख्वाजा सरा कम्युनिटी है पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद में खासतौर पर उनके साथ काम भी किया हुआ है, किस तरह काम किया है, रमज़ान के महीने में कुरान पढ़ाया उनको, और उनमें से कई ने अपनी बहुत बहुत ट्रेजिक स्टोरीज मेरे साथ शेयर भी की हैं कि व्हाट डिफिकल्टी दे हैव टू गो थ्रू। आपको पता है इनमें से यानी व्हाट हैपेंस, बायोलॉजिकल मेल एक घर में, मैं एक टिपिकल सिनेरियो बिल्ड कर रहा हूँ आपके लिए, एक बायोलॉजिकल मेल एक गांव में पैदा हुआ है लेकिन वो थोड़ा सा फेमिनिन है, यानी थोड़े से फेमिनिन ट्रेड्स हैं उसके अंदर हार्मोनल मसले भी हो सकते हैं, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम थे, एस्ट्रोजन लेवल्स हाई थे, कुड बी एनीथिंग, बट रिजल्टेंट ये निकला कि वो है बायोलॉजिकल मेल है, शिनाख्ती कार्ड एवेंचुअली उसका मेल का बना लेकिन उसकी कुछ क्वालिटीज फेमिनिन है, एंड आई एम श्योर यू नो पीपल लाइक दैट इज वेल। तो ख्वाजा सरा कम्युनिटी का कोई गुरु शुरू जो है वो वहाँ पे आया, उसने जाके पेरेंट्स को बुली किया लिटरली कि ये बच्चा हमारे वाले करें, यहाँ पे किसी काम का नहीं है, हम इसको अपने पास रखेंगे ये। और पेरेंट्स भी जो बेवकूफ़ होते हैं और जिनको नहीं पता होता वो भी अपने उसके हवाले कर देते हैं कि जी हमारे लिए ये बच्चा बेइज्जती का बायस बनेगा, तो बेहतर ये कि किसी के हवाले कर दो इसको, वो हवाले कर देते। अब वो जो ख्वाजा सरा कम्युनिटी का जो गुरु उनको उठा के ले गया, वो अब कौन सी इज्जत की ज़िंदगी देगा उनको? नंबर वन, या तो जो मेन, सबसे मेन जो काम उसको लगाएगा वो है एज अ सेक्स वर्कर। He will now be having relationships with men for money. Number two, ये शादियों पे नाचेगा, ये उससे number two level का काम है जो काम करेगा, ये शादियों पे नाच गा के पैसे कमाएगा, number two. और number three, ये भीख मांगेगा, खासतौर पर रमज़ान के महीने में जब ये ऊपर वाले दो शायद नहीं चलेंगे तो फिर ये तीसरी कैटेगरी भीख मांगने वाली है. तीनों में इंसान अपने आप को जलील कर रहा है. ये उसकी डिग्निटी को प्रिजर्व करने की बात नहीं, ये इंसान को जलील करने की बात है. ये जो मैंने आपके सामने बिल बताया था, जो एक्ट है 2018 वाला, उसमें जो लिखा हुआ था ना कि ट्रांसजेंडर्स को राइट्स क्या मिलेंगे और प्रोटेक्शंस क्या मिलेंगी, प्रोटेक्शन ये थी कि दे शुड नॉट बी फोर्स टू बेग. व्हाट अबाउट फोर्स टू हैव सेक्स? वेयर इज दैट इन द आर्टिकल? कहाँ है वो एक्ट में कि दे विल नॉट बी मेड टू हैव सेक्स विद पीपल? वेयर इज दैट दे विल बी नॉट अलाउड टू डांस एट वेडिंग्स? क्या उसको आप हकीर नहीं समझते? क्या ये उसको तजलील नहीं है उसकी? लेकिन अब तो पूरी इस कम्युनिटी के अंदर वो इस प्रोस्टिट्यूशन को वो सेक्स वर्क कहते हैं कि नहीं, ये एक डिग्निफाइड प्रोफेशन है कि इफ अ वुमन वांट्स टू डू इट और इफ अ मैन वांट्स टू डू इट देन इट शुड बी अलाउड एज अ प्रोफेशन. सो हमने अपने आप को सबसे पहले एजुकेट करना है और अपने यंगस्टर्स को एजुकेट करना है खास तौर पर कि हम लोग इनके ट्रैप्स में ना फंसे. बॉयज हैव टू लर्न टू बी बॉयज एंड गर्ल्स हैव टू लर्न टू बी गर्ल्स. एक पूरी कैंपेन चल रही है कि बॉयज को अफेमिनेट बनाया जाए, उनको रोल मॉडल्स भी ऐसे दिए जाएं जो बहुत फेमिनिन किस्म के हैं. ड्रेसिंग में ऐसे हालात आ गए हैं कि जी वो कपड़े ऐसे हैं जो यूनिसेक्स हैं. इट गोज फॉर एवरीबॉडी. तो हमने इस चीज को चेंज करना है. एंड जिसको ये लोग टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी कहते हैं, यानी मैस्कुलिनिटी विच इज इन अ पॉजिटिव सेंस, यानी मर्द जो है वो मर्दों वाले काम करे, गेटिंग इन्वॉल्व इन यू नो रफ एंड टफ एनवायरमेंट्स, स्पोर्ट्स खेलना, गेम्स खेलना, अपने अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस करना, अपने घर वालों का ख्याल करना. यानी ऐसा ना हो कि हमारे ऐसे मर्द हों जो बिल्कुल, यानी मर्द का शैल तो है लेकिन इनसाइड से दे डोंट हैव दैट फायर, दैट पैशन टू बी अ मैन. मर्द होने का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों के ऊपर बदमाशियां करें, ये मर्दानगी नहीं है, बल्कि ये मर्दानगी का ऑपोजिट है. मर्दानगी का मतलब होता है टू स्टैंडिंग अप फॉर ट्रूथ एंड जस्टिस एंड यू नो एंड प्रोटेक्टिंग द वीक ऑफ सोसाइटी. दिस इज व्हाट इट मीन्स टू बी अ मैन. सो वी हैव टू मेक आवर बॉयज इन टू रियल मैन एंड वी हैव टू इनकरेज आवर गर्ल्स कि आपकी खूबसूरती आपके फेमिनिन होने में है. हॉलीवुड में एक पूरी कैंपेन चल रही है जहाँ पे सारी जो फीमेल लीड्स हैं उनको मर्द बनाया जा रहा है. यानी व्हाट आर दे डूइंग? दे ट्राइंग टू कम अप विद फीमेल हीरोज. बेसिकली वो स्क्रिप्ट पूरा लिखते हैं मर्द के लिए और सिंपली उसकी जगह औरत डाल देते हैं. सो फॉर एग्जांपल जो स्क्रिप्ट, फॉर एग्जांपल वंडर वुमन होगा या वट एवर एक्स वाई जेड जो भी कैरेक्टर्स हैं, वो कैरेक्टर लिखा उन्होंने मर्द के लिए होगा कि एक मर्द है ना जिस तरह फॉर एग्जांपल किसी बैटल फील्ड में जा रहा है और धमाके हो रहे हैं और ही फील्स नो रिमोर्स, नो रिग्रेट, यू नो स्टोन कोल्ड किलर. एंड देन क्योंकि मर्दों के अंदर ये टेंडेंसी होती है कि वो अपने इमोशंस को कट ऑफ कर सकते हैं, वो उस कैरेक्टर को निकाल के कहेंगे लेट्स मेक दैट अ वुमन, और वो वुमन की नेचर के खिलाफ है. इसीलिए इनकी मूवीज इतनी फ्लॉप हो रही हैं. ये ऑन अ साइड नोट कि औरतें कहती हैं वी डोंट आइडेंटिफाई दिस वुमन, हु इज दिस, वी डोंट आइडेंटिफाई दिस वुमन. ये औरत कहाँ होती है कि एक लड़की जिस तरह भी एक इन्होंने मूवी बनाने के थे बैट गर्ल के नाम से, बैट गर्ल, they spent over about $100 million on it and before its release it flopped. release hone se pehle screening mein unhone kaam leke nahi jaate isko, kitni flop thi, kyunki unhone kya kiya, kyunki batman ki universe mein super powers nahi hoti. batman ki universe mein it's not like superman is flying in the air. batman is a normal man who knows martial arts and he has gadgets and he's got a lot of money. theek hai, to batgirl ne kya hona tha, it was going to be a normal girl. एंड आप मूवी में ये दिखाने लगे थे कि एक नॉर्मल गर्ल जो है वो 50 बंदे को कुट दिया उसने, तो नो बडी वुड बाय इट कि ठीक है वो भी फैंटास्टिक हो जाए, लेकिन दिस इज अ बिट क्रेजी, इट वुड सीम वेरी अनरियलिस्टिक. तो इट फ्लॉप्ड बिग टाइम बिकॉज अब एक नैरेटिव टो कर रहे हैं. पहले एक जमाने में फीमेल कैरेक्टर्स तब भी स्ट्रांग आती थी लेकिन उनके पीछे स्ट्रेंथ के उनके इमोशंस होते थे, उनकी फीलिंग्स होती थी, वो फीलिंग्स उनके स्ट्रेंथ के कैरेक्टर को डेवलप करती थी. अब उन्होंने क्या किया, औरत के इमोशंस को बिल्कुल निकाल दिया, सिर्फ हैविंग इमोशंस इज अ बैड थिंग. No, having emotions is what makes women beautiful. That's what makes them women. हम उनको appreciate इसलिए करते हैं कि यानी जितना प्यार माँ दे सकती है वो बाप नहीं दे सकता, इसीलिए माँ के पाँव के नीचे जन्नत है, बाप के पाँव के नीचे तो चप्पल ही है. इसीलिए माँ का मकाम जो है ना वो तीन गुना कहा कि माँ डिजर्व्स योर रिस्पेक्ट एंड लव एंड टाइम मोर. योर माँ डिजर्व्स इट मोर, योर माँ डिजर्व्स इट मोर. वाई? बिकॉज दे हैव समथिंग दैट मैन कैन नेवर हैव. So why are you trying to remove those beautiful characteristics from women? So this is what our fight is up against. कि हमारे जो जनरल रोल्स हैं उनको मेंटेन किया जाए। सो इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस चैलेंज को सही तरीके से फेस करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला हमारी नस्लों की हिफाजत फरमाए, हमें ये तौफीक दे कि हम बाकायदा तौर पर ख़ुद भी अच्छे तरीके से मर्द बन सकें और लोगों के अंदर भी ये अच्छी वैल्यूज़ इंस्टिल कर सकें और इस्लाम की तालीमात पर हम कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, हमेशा दीन के ऊपर चलने वाले बने। गलतियां हर इंसान से होती हैं लेकिन कभी गलती हो वापस दीन की तरफ लौट के आएँ। अल्लाह ताला से दुआ कि अल्लाह ताला हमारी तमाम गलतियां को तय गुनाहों को माफ़ फरमाए, अल्लाह ताला हम सब से हमारे तमाम नेक अमाल कबूल फरमाए। यकीनन हमारे नेक अमाल जो हैं वो बहुत टूटे फूटे हैं, इसलिए अल्लाह ताला से दुआ कि अल्लाह ताला हमें अपनी शान के मुताबिक अजर अता फरमाए। अल्लाह हम सब से राज़ी हो, हमें दुनिया और आखिरत दोनों की खैर नसीब फरमाए। रब्बाना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम वतुब अलैना इन्नका अंत तवाबुर रहीम वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन वअला आलिही वसहबिही अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।